उमेर साहब, सो वी आर लाइव वंस अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ टॉक बिफोर विकेट। आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद। देखिए जी, वर्ल्ड कप के मैचेस जोर और शोर से जारी हैं। कुछ बहुत एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं, कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं, और सबसे बढ़कर कुछ बहुत ही ज्यादा कोई हार्ट ब्रेकिंग किस्म के रिजल्ट्स आए हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी फैंस के लिए, हम जैसे। तो उस पर भी हम बात करेंगे सबसे पहले। लेकिन आगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच जो हुआ, वो बड़ा क्रूशल मैच है वर्ल्ड कप में। आगे जाके उस रिजल्ट का मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, तो उस पर लाजमी हम बात करेंगे। अफगानिस्तान इंग्लैंड का मैच है, श्रीलंका के मैचेस है, बांग्लादेश के, सब पर बात करेंगे जो अब तक हुए। लेकिन उमेर साहब, ये क्या हो गया हमारे साथ? दिल टूट गया भाई, क्या हो गया ये
यार? बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिल टूट गया, जज्बात सारे खराब हो गए, सब चीजें खत्म हो गई। बल्कि जलाल, मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा कि हमने आज वीडियो बनाई, अगर हम कल बनाते तो फिर हमारे जज्बात हमारी शक्ल से भी नजर आ रहे होते हैं। तो ओवरऑल यार, मैच थोड़ा पाकिस्तान अच्छा खेला, मतलब कि स्टार्ट में थोड़ा स्ट्रगल किया बाबर और रिजवान ने, उसके बाद एक शान और इफ्तिखार ने बड़ी प्रॉमिसिंग इनिंग खेली, पाकिस्तान की थोड़ी सी जान दी वो गेम में। उसके बाद स्कोर भी हो गया 160 तक, जितना बाबर ने टॉस के टाइम बोला था कि यार इतना स्कोर हो जाए तो हम लोग वो रोक लेंगे। फिर इंडिया की बैटिंग आई, तब भी हमारे जज्बात बड़े वो स्ट्रांग थे, बड़े हम लोग खुश थे। लेकिन जब उसके विराट कोहली और हार्दिक पांड्या आए, तो उस टाइम तो बस फिर हालात सारे खराब हो गए, और बड़ा यार अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो खैर, ये था। आप मुझे बताएं कि जलाल साहब के रोहित शर्मा आते हैं टॉस पे और आके पहले करते हैं बॉलिंग, तो अरे में क्या तासुरात हैं कि अच्छा डिसीजन था?
यार आई थिंक अच्छा टॉस ही एंड में साबित हुआ, क्योंकि पहली बात है इंडिया मैच जीत गया, ठीक है। टॉस तो अच्छा साबित इस वजह से हुआ क्योंकि देखो, इनिशियली अर्शदीप की और भुवी को अच्छी भली स्विंग मिल रही थी, जो हम पाकिस्तान वाली इनिंग्स में हमें वो स्विंग देखने को उस तरीके से नहीं मिली, तो ऑब्वियसली एडवांटेज गया उनको। सबसे बड़ी बात है कि बाबर पहली गेंद ही उसको अच्छी पड़ गई, सबको पता है खब्बे बॉलर की राइटी को इन स्विंग आने वाली बॉल अच्छी लाइन और लेंथ पर पड़ जाए तो वो बहुत डिफिकल्ट होती है अर्ली ऑन। ये हम इंडियन वाले बैटर्स की बात करते रहे कि उनका लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट स्ट्रगल है, तो अब वो पाकिस्तानी बैटर की भी आ गई है। जो पहले इधर एक किसी कॉमेंट करते हुए बंदे ने कहा भी था कि यार राइटी, हर राइटी को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन खासतौर पे इंडियन राइटी बैट्समैन को ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन उमेर साहब, आई थिंक इट वाज अ गुड टॉस फॉर इंडिया टू विन। लेकिन चलो, जो भी हो गया स्टार्ट, जिस तरह आपने जिक्र किया पाकिस्तान के साथ थोड़ी, मतलब बहुत बुरा स्टार्ट हो गया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इफ्तिखार ने फाइट बैक की है, पंच किया है, शान पे मैं दोबारा आऊंगा क्योंकि शान इनिशियली थोड़ा लकी रहे, थोड़ा सा स्ट्रगल भी करते रहे, लेकिन उनकी इनिंग्स भी जिक्र ज़रूर करेंगे। क्या देखते हो कि 12 ओवर 90 पे पाकिस्तान 2 था एट दैट स्टेज, जो स्ट्रगल के बावजूद, उसके बाद क्या हुआ और कैसे देखते हो कि बैटिंग और रन्स हो सकते थे?
यार उसके बाद मेरे ख्याल में जिस तरह शान, मसूद और इफ्तिखार खेले, खास तौर पे इफ्तिखार, वो बड़ा अच्छा खेला है। बल्कि हम लोग पहले भी एपिसोड्स में बात करते रहे कि ऑस्ट्रेलिया में उसके काफी अच्छे स्टैट्स हैं, तो उसने वही चीज प्रूव की, एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली। वो जो पिच थी, काफी ज्यादा स्विंग हो रही थी, सीम हो रही थी बॉल, लेकिन फिर भी वो मतलब प्रेशर उस तरह नहीं उसने टेकअप किया, और ओवरऑल जो उसने छक्के मारे अक्षर पटेल को, मेरे ख्याल में वो वाला एक टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले जो रन रेट थी पाकिस्तान की, थोड़ी कांस्टेंट जा रही थी, इतनी ज्यादा उस तरह नहीं थे ये लोग स्ट्राइक रेट वगैरह इनका, लेकिन जब अक्षर पटेल को छक्के पड़े उसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम बन गया था गेम में। तो मेरे ख्याल में ये जो हम लोग मिडल ऑर्डर की बात करते थे, खास तौर पे फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन, वो वाला रोल शान, मसूद और इफ्तिखार ने अच्छे तरीके से प्ले कर लिया, और ये सीन है। आप मुझे बताएं कि शान मसूद के बारे में क्या ख्याल है, कि एक तो वो देखें, अगर हम शान मसूद को कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ भी थोड़ा, और वैसे भी अगर हम देखें कि शान मसूद सेकंड ओवर में आते हैं और जिस तरह वो अपनी इनिंग को बिल्ड अप करते हैं, और लास्ट में जाके उनको वहां पे वो वाले चांसेस नहीं मिलते, मतलब कि 17वें 18वें ओवर में आके वो उस तरह की बॉलें फेस नहीं करते, तो उसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर शान मसूद को चांसेस मिल जाते थोड़े और, तो वो फिर स्कोर ज्यादा हो जाता?
बिल्कुल यार, मैं इस पर आता हूँ अभी, लेकिन पहले अपने जो भाई इधर जुड़ गए हैं उनका जरा कॉमेंट शॉमेंट्स पहले ले लूँ, शान मसूद पे आता हूँ। उस्मान अली भाई सलाम कह रहे हैं सर आपको, मुझे वालेकुम अस्सलाम। ANZ साहब भी जुड़ गए हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं, आपका कॉमेंट लेते हैं सर जैसे जैसे हम आगे अभी टॉपिक पे आते हैं ना। और वकास लतीफ साहब हैं, वो भी हाई वोल्टेज मैच का कह रहे हैं, मैच था जीता वर्ल्ड कप फिर भी हार गए। हाँ बिल्कुल सही बात है। ANZ वुडू पाक भाई भी सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। क्रिकेट फीवर भाई भी सलाम कह रहे हैं, तो इन सब के भी कमेंट उमर शामिल करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं जो आपने बात की शान मसूद की। देखो इनिशियली उनका रन आउट भी मिस हुआ, फिर एक कैच भी उनका कंट्रोवर्शियल सा था जो अश्विन वाला भी था, लेकिन ये बोलूंगा कि जो उनका रोल था उस टाइम के ऊपर जैसे तैसे भी लकी रहे या जो भी थे वो अदा कर चुके थे। और अगर आप कंपैरिजन करो जैसा आपने कहा दूसरे ओवर में विराट कोहली भी आ गए थे अपनी बैटिंग इनिंग्स में, ये भी हमारी बैटिंग इनिंग में दूसरे ओवर में आ गए थे, लेकिन अगर बॉल्स फेस देखो तो शायद इनकी 10 से 12 बॉलें कम है जितनी आई थिंक विराट कोहली ने फेस की हैं। तो वहां पर जो मैं आपसे सवाल फेंका भी था कि 12 ओवर के बाद पाकिस्तान ने ना वो जो शदाब हैदर और आसिफ हैं उन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया, हालांकि वो अगर उस टाइम के ऊपर शान क्योंकि सेट हो गए थे उनको थोड़ा सा मजीद बॉल्स मिलती शायद पाकिस्तान ज्यादा बेहतर स्कोर कर जाता और एक छोटी सी और पार्टनरशिप चाहिए थी इफ्तिखार के फौरन बाद। हालांकि इफ्तिखार के बाद हम बिल्कुल ही बट्ठा बैठ गया और फिर वो तो एंड में शाहीन वगैरह ने एंड में आगे मार दिया, वरना रन इससे भी कम थे। मेरा ख्याल 175 पाकिस्तान बड़े आराम से कर सकता था, क्या कहते हो?
यार बिल्कुल सही बात है, बड़े आराम से कर सकता था, बल्कि जलाल लिया है, आप सही कह रहे हैं कि जो हमारा लोअर मिडल जो बैट्समैन है जिसमें आपका ये शादाब आया, हैदर आया, आसिफ आया, नवाज आया, यार इन्होंने तो बिल्कुल वैसे खेला है जिस तरह जैसे हम लोग खेलते थे कि 5 ओवरों की गेम है तो लास्ट के 2 ओवर रह गए, आते साथ बस शॉट मारो या छक्का जाए या आउट हो, बिल्कुल इनका इंटेंट बिल्कुल वैसा था, सही है, कोई उन्होंने प्रॉपर शॉट्स नहीं मारी। और जिस तरह आसिफ आउट हुआ है यार वो कोई
नहीं, वो तो ज्यादती है
यार, यार ये एक बहुत ज्यादा ज्यादती की है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया सही है शान मसूद ने और इफ्तिखार ने, और उसके बाद फिर मतलब इस तरह का अगर आगे से रिस्पांस आया तो जाहिर है ये वाला अच्छी चीज नहीं है। और यार और जलाल मेरे ख्याल में ना कि पाकिस्तान जो हारा है वो भी एक मेजर वजह ये है कि जहां पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो गया पाकिस्तान का आराम से स्कोर हो सकता था 180 तक 175 मतलब इतना हो सकता था स्कोर।
बिल्कुल क्या कहते हैं ANZ साहब कहते हैं आई हैव नेवर एवर सीन अ क्रिकेट मैच लाइक दिस इन माय लाइफ, द पीपल हु सॉ इट लाइव कैन अंडरस्टैंड दिस, द हाइलाइट्स वोंट डू इट फॉर यू। बिल्कुल सर, बड़ा ही कोई हाई वोल्टेज मैच था, जिस तरह वकास लतीफ साहब ने भी बोला है हाई वोल्टेज मैच था वर्ल्ड कप का। लेकिन अच्छा ANZ साहब फिर कहते हैं बोथ द टीम्स प्लेड वेल बट आई फील फॉर पाकिस्तान बिकॉज देयर मोरल इज वेरी लो नाउ, इट कैन हर्ट देम इन फ्यूचर मैचेस। ये हम भी उमेर बात कर चुके हैं कि लास्ट वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान से हारा और उसके बाद रिकवर नहीं कर सका क्योंकि प्रेशर इतना होता है, और इधर तो 90,000 बंदा उमेर देख रहा था जिसमें से आई थिंक 80% क्राउड इंडिया का था तो प्रेशर तो पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत था, ये अगर हम बोलें कि भाई नहीं था तो वो तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और बाद में
यार ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह अभी हारे हैं ये लोग सही है, तो उस चीज से बकअप करना काफी थोड़ा सा ना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा, खास तौर पर नवाज के लिए।
हाँ।
क्योंकि एक तो वो हाई वोल्टेज वो एक बल्कि वो आ रहे लास्ट ओवर करवाने के लिए और उसके बाद जिस तरह उनको स्कोर पड़ा है तो मेरे ख्याल में ये काफी एक सेट बैक है। और इससे अगर अभी तो यार शुक्र है अगला मैच हमारा जिम्बाब्वे के साथ है।
हाँ।
तो वो अगर हरा दें फिर हो सकता है हमारा ये जो प्लेयर्स हैं चेयर अप हो जाए, बकअप आ जाए इनमें और फिर थोड़ा सीन
ऑफ लेट। वैसे जिम्बाब्वे ने भी हमें बड़ी स्ट्रगल दी हुई है, लेकिन खैर एनीवेज मैं अगर इस पे बात करूं ना जो आपने बात की आसिफ अली की शॉट के ऊपर, यार देखो आसिफ अली भी बाउंसर पे आउट होते हैं, हैदर अली भी काइंड ऑफ शॉर्ट बॉल पे आउट होते हैं, शादाब खान भी शॉर्ट बॉल पे आउट होते हैं, मोहम्मद नवाज भी ऑलमोस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे आउट होते हैं, फुल बाउंसर्स नहीं मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स पर। लेकिन आसिफ ने जिस तरीके से शॉट मारी है या तो कोई ऐसे लग रहा हो कि अर्शदीप 150 की रफ्तार पे बॉल करा रहे थे, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि अर्शदीप बाउंसर करा ही नहीं सकते जैसे कभी जिंदगी में उन्होंने बाउंसर कराया नहीं है, और जिस तरीके से उन्होंने डक किया है कि अल्लाह मियां अगर ये बॉल मुझे लग गई तो मैं मर ही ना जाऊं, मतलब वो वाले हालात थे इनके, तो समझ नहीं आई यार कि ऐसी शॉट ऐसे बैट्समैन से जो कि मशहूर है कि मैं अटैक करता हूं बॉलर्स को, आप डर के खेल के आउट हो गए हो तो आप कर क्या रहे हो 8वें नंबर पे।
बिल्कुल यार ये ज्यादती है, टोटली ज्यादती है, ये जो आसिफ अली की जो पोजीशन है ये मेरे ख्याल में जाया हो रही है इस टाइम। और जलाल एक और बात यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूँ कि जिस तरह रोहित शर्मा ने वहां पे जो स्टेप लिया हार्दिक पांड्या को लाने के लिए ओवर्स में जब शादाब नवाज और वो खड़े थे ये हैदर अली, मतलब अच्छी बॉल करा रहा था पांड्या का, हमें पता है कि सबसे अच्छी शॉर्ट पिच बॉल इस टाइम पांड्या की है, तो उसने वही वाली चीज वही वाला प्लान उसने एग्जीक्यूट किया और वहां पे देखें अच्छा डिसीजन साबित हुआ पांड्या ने وہاں پہ تینوں وکٹیں لے لی جو کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ سکور لے جائیں گے.
تو یہ نہیں, بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. دیکھو وہی میں بات لا رہا ہوں, نتھنگ اگینسٹ آصف علی, ان کی ابلٹی پہ مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے, اور یہ بھی ڈاؤٹ نہیں کہ انہوں نے پاس میں پاکستان کو میچز جتائے ہیں, ٹھیک ہوگا سب ہوگا, لیکن اس چیز پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ 15 میچوں میں ایک میچ وہ جتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں عمیر, اگر آپ دیکھو یہ ہم اپنی پچھلے ایپیسوڈز میں مطلب ہم لوگ خود تھک گئے کہہ کہ میں نے آن پرپز عمیر کو کہا کہ یار بس کرتے تھے یہ بات کرنی فورتھ سیمر والی, کہ بھائی مطلب ہے کہ ہر ایپیسوڈ میں ہم سیم ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں. لیکن وہی بات ہوئی, مجھے یہی ڈر تھا عمیر کہ پاکستان رائٹ ٹیم کمبینیشن کے ساتھ نہیں جائے گا, ہمیں پتہ ہے ہماری اسٹرینتھ ہماری بالنگ ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں فلی کور کیوں نہیں کر دیتے. محمد وسیم اگر آپ کے آٹھویں نمبر پہ کھیلتے ہیں, وہ بھی ایسا پلیئر تو نہیں ہے کہ وہ چھکے نہیں مار سکتا. پھر آپ نے دیکھا شاہین بھی کیپیبل ہے, حارث بھی کیپیبل ہے, نسیم بھی کیپیبل ہے, تو ہم نے کتنے بیٹرز چاہیے بھائی. مطلب
یار
بیلنس خراب ہوتا ہے آصف کی وجہ سے,
ٹوٹلی بیلنس خراب ہوتا ہے جلال. یار آپ دیکھیں ٹی ٹوینٹی کی کون سی ایسی ٹیم ہے جس کے پاس چار ابھی فاسٹ بولرز نہیں کھیل رہے. ہم نے آسٹریلیا کا دیکھا, صحیح ہے آسٹریلیا کے میچ پہ بھی خیر ماتے ہیں, لیکن اس پہ بھی ہم نے دیکھا آپ کا فاسٹ بولر شروع میں اسٹرگل کر رہے ہیں لیکن بعد میں ان کو یوٹیلائز کر دیا گیا, پھر وہ مطلب ملٹیپل ویریشنس کے ساتھ بولرز آئے فاسٹ بولرز. نیوزی لینڈ کا بھی یہی حساب, مطلب کہ سارے جو ٹیمیں ہیں ان سب کے پاس چار فاسٹ بولرز ہیں. تو میرے خیال میں یہ والا پاکستان کا لیک ہے اور پاکستان کو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے اور کافی ضروری.
بالکل
اشفاق میں آئیڈیل پوزیشن آصف علی کی ہے جو کہ ابھی ویسٹ ہو رہی ہے, ٹوٹلی ویسٹ ہو رہی ہے. اور بس یہ بولوں گا,
اشفاق علی صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم جلال بھائی عمیر بھائی. وعلیکم السلام. بابر اعظم نے بلنڈر کیا, ایک تو اس نے وسیم جونیئر کو نہیں کھلایا اور افتی چاچو کو بالنگ نہیں کرائی. اس پر بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. دیکھو وسیم جونیئر کی بات پہ پھر میں وہی والی بات کروں گا عمیر, بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں آصف علی آپ کا میچ ونر ہے تو ہم آصف علی کو نہیں ہٹا سکتے, مطلب یا حیدر علی کی بات کرتے ہیں لوگ, حیدر علی کو بٹھا دو یا آصف علی کو بٹھا دو. پہلے لوگ شان کی بات بھی کر رہے تھے, ہم بھی کر رہے تھے, لیکن شان نے پروف کر دیا کہ یار اتنی کروشل اننگز انڈر پریشر وہ کھیل گیا جیسے بھی کھیل گیا, لیکن اب اس کو آپ باہر تو نہیں کر سکتے. حیدر علی کی ایک ہی پرفارمنس آئی نیوزی لینڈ کے اگینسٹ جو کہ بہت ایکسیپشنل تھی, تو وہ میرا خیال ہے اس کے لیے عمیر بچت ہوگی اس اننگز کی وجہ سے, ورنہ وہ گیا تھا مطلب ٹیم سے. لیکن اب آصف جس نمبر پہ آ رہا ہے, حیدر تو چلو اوپر بھی بیٹنگ کر لیتا ہے, آصف آٹھویں نمبر پہ, دنیا میں کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جہاں پر کوئی آل راؤنڈر نہ کھیل رہا ہو, یا وہ وکٹ کیپر بیٹسمین ہوگا یا وہ ایسا بیٹ ہوگا جو بالنگ بھی کرا سکتا ہے, صحیح ہے. سولی ایک بیٹر کھلا رہے ہو آپ جو اونلی کیپیبل ہے کہ 8-10 گیندے کھیلے گا, صحیح ہے میچ.
بالکل یار
سمجھ نہیں آ رہی
یار, بالکل ایک عجیب سا سینیریو بنا ہوا ہے. جس طرح یار جلال وارم اپ میچ ہوتا ہے, ابھی ہم نے دیکھا وارم اپ میچ میں وسیم بھی کھڑا تھا آصف بھی کھڑا تھا, وہاں پہ سٹرائک لے رہا تھا وسیم, ٹھیک ہے. تو ایک آپ کے پاس ایک سامنے پروف بھی ہے اس چیز کا کہ یار وسیم بیٹنگ کر سکتا ہے, اس کو لے آؤ کھلا لو.
تو اور سب سے بڑی بات یہ جو اشفاق علی صاحب نے کی نا یار, دیکھو پورے سال ہم دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ کے بعد سے خاص طور پہ کہ بابر اعظم کا بڑا کانفیڈینس تھا محمد وسیم کے اوپر, وہ تو اس کو ایز اے تھرڈ سیمر کھلا رہا تھا ٹیم میں, صحیح ہے نا. تو اب اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کے دماغ میں آیا کہ نہیں ہم آصف علی کے ساتھ جائیں گے اور ہمیں 8 بیٹسمین چاہیے, مطلب سمجھ نہیں آ رہی بھائی, جو آپ کے 7 بیٹسمین نہیں کر رہے وہ 8ویں نے آ کے پتہ نہیں کیا کر لینا ہے, کچھ اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی
ابھی. اچھا مزے کی بات جلال صاحب آصف آؤٹ ہوتے ہیں تو شاہین شاہ فریدی آتے ہیں وہ اچھے چھکے مار دیتے ہیں,
بالکل.
پھر حارث رؤف آتا ہے وہ بھی پہلی بال پہ چھکا مار دیتا ہے. اس کے بعد مطلب کہ یہ بات کہنے کا پرپز یہ ہے کہ دیکھیں اگر لیٹ سپوز آپ رکھ رہے ہو آصف علی کو, اگر وہ نہیں کھیلتا تو اس کی جگہ آپ کے وہ نیچے بیٹسمین تو ہے جو کہ سلوک کر سکتے ہیں, نسیم ہے وہ بھی چھکا مار لے گا, وہ بھی ہے. تو پراپر ایک پوزیشن پاکستان کی ضائع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور ورلڈ کپ سے پہلے میرے خیال میں ان کو اس طرح کی ڈیسیجن لینے چاہیے تھے, اب تو خیر وہی بات ہے کہ پانی سر سے اتر گیا ہے.
یار یہ دیکھو آپ کے سامنے ایگزامپل تھی جو لاسٹ ورلڈ کپ انڈیا ہارا تھا پاکستان سے جو میچ, اس میں سب سے بڑا انڈیا پہ کرٹیسزم کیا ہوا تھا کہ ہاردک پانڈیا کو آپ نے کیوں کھلایا, کیونکہ وہ اس ٹائم پہ بالنگ نہیں کر رہے تھے, صحیح ہے. وہ اس ٹائم پہ کہہ رہے تھے ہاردک پانڈیا ایز اے بیٹر نہیں کھیل سکتا, اس وقت وہ فارم میں بھی نہیں تھے بیٹنگ میں بھی, لیکن کمبینیشن خراب ہو رہا تھا ہاردک پانڈیا کی وجہ سے, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ شردل ٹھاکر کو کھلاؤ یا کسی اور آل راؤنڈر کو کھلاؤ. یہاں پہ پاکستان نے سیم مسٹیک کر دی, تو سمجھ نہیں آیا بالکل. اچھا جی ادھر لکھتے ہیں,
صحیح بات,
اور کامنٹ کوئی لیتے ہیں عمیر صاحب, کامنٹ تو کافی ہے. ہم
نے پاکستان کی بیٹنگ پہ تو زیادہ ہے تو لے لیں, پھر اس کے بعد انڈیا کی بیٹنگ پہ چلتے ہیں.
बिल्कुल क्रिकेट में थोड़ा सा रेलिवेंट वाला कमेंट निकाल रहा था, मैंने कहा अभी टॉपिक टॉपिक वाइज चलते हैं। क्रिकेट फीवर साहब कहते हैं, आसिफ डिसमिसल वाज अ लिटिल बिट सिमिलर टू हिज डिसमिसल इन इंग्लैंड वार्म अप मैच, व्हाट वाज ही थिंकिंग, या तो बॉल लीव कर देता या बैट ले आता सही से। बिल्कुल यार वही तो समझ नहीं आ रही। और देखो इंडिया की टीम पूरी टीम से पाकिस्तान को शॉर्ट बॉल पे टारगेट करेंगी, सबको पता है इंग्लैंड वाली सीरीज से और एशिया कप से पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका हुआ है। अब या तो आसिफ अली एक्सपेक्ट ही ना कर रहा हो ना कि मुझे शॉर्ट बॉल होगी, उसको तो एक्सपेक्ट करना चाहिए था मुझे बॉल ही शॉर्ट होगी। समझ नहीं आई भाई, समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्या स्टोरी चल रही है। खैर
बड़ा यार एक अजीब सा सिनेरियो हुआ। खैर जलाल साहब, पाकिस्तान की तो बैटिंग होगी काफी ज्यादा, और इंडिया की बैटिंग के बारे में बताएं, खास तौर पे राहुल और रोहित शर्मा के बारे में बताएं कि उनका जो इंटेंट था वो कैसा लगा आपको मैच में?
यार मुझे तो वो बड़े टेंटेटिव लगे दोनों, ठीक है। नॉर्मली आप देखते हो रोहित शर्मा की थोड़ी सी हाई बैकलिफ्ट होती है, और मैं इस चीज पे जो सबसे ज्यादा नोट किया उनकी इतनी बैकलिफ्ट हाई नहीं थी, और वो कोशिश एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कि मुझे फुल लेंथ बॉल शाइन कराएगा, और वो बस उसको टच करने की, डग आउट करने की कोशिश कर रहे थे। इवन जो उन्होंने एक कवर ड्राइव भी मारी, वो भी पूरी कवर ड्राइव नहीं मारी, उन्होंने बस टच किया ताकि बैट और पैड के दरमियान कोई गैप क्रिएट ना हो के बॉल अंदर स्विंग हो जाए। थोड़े से टेंटेटिव लगे केएल राहुल, तो उसी तरह आउट हुए उमैर नसीम शाह से, एशिया कप की कार्बन कॉपी थी वो, ठीक है, उसी तरह उनका एज लगा और वो विकेट पे, तो वो भी टेंटेटिव शॉट थी, खुल के नहीं खेल सके। आई थिंक वसीम अकरम ने सही बात की कि जब बड़ा बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, जैसा शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनकी फिटनेस पे भी मैं अभी आपसे सवाल करूंगा, कि जब बड़ा बॉलर बॉल कर रहा होता है तो बैट्समैन के माइंड में होता है कि यार नहीं, इसकी बॉल ज़रा थोड़ी सी देखनी है, और शायद उनकी गंदी गेंदों पर भी उनको उस तरह रन्स नहीं पड़े जिस तरीके से उनको इंडिया मार सकता था। लेकिन क्या आपको उमैर शाहीन फिट लगा? क्योंकि पेस वॉज अराउंड 135, नॉर्मली इज मतलब इन हाई 140s या 140s में एटलीस्ट होते हैं, क्या ख्याल है?
यार शाहीन मुझे उस तरह फॉर्म में नहीं लगा, सही है, मुझे लग रहा है कि अभी इसको थोड़े से और मैचेस लगेंगे अपना कमबैक मारते हुए। तो यही बोलूंगा कि शाहीन की जो बॉल है, जो उसकी पेस है, वो भी उस तरह नहीं थी जिस तरह 135-136 पे करा रहा था, और जिस तरह उसने डेथ ओवर में बॉलिंग कराई है वो भी कोई एक्सेप्शनल, खैर वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, सेम लाइन पे बॉल दे रहा है विराट को, विराट भी बड़े मजे से उसको मार रहा है। तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी का एक थोड़ा सा सेटबैक मिला है पाकिस्तान को ये वाले मैच में, कि जोन सा वो ओवर जो बाबर आजम सोच रहे थे कि वहां पे अच्छी बॉलिंग करा देंगे, वो वाली चीज नहीं एग्जीक्यूट हो सकी।
अच्छा इधर एक और पॉइंट, एक और पॉइंट है मेरा
यहाँ पे, जी जी बोले,
मेरा पॉइंट ये था यहाँ पे कि देखो हम प्रैक्टिस मैच में देख रहे थे शाहीन अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ वाला जो था उसमें बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई थी अप फ्रंट, ठीक है, इधर भी बॉलिंग तो अप फ्रंट उन्होंने बुरी नहीं करवाई, लेकिन हमने देखा था उस मैच पे भी उमैर इनको आखिर में मार पड़ी थी, और शाहीन का अगर आप पैटर्न देखो, इनका कैरियर निकाल के देखो, तो उनको एंड में मार पड़ जाती है, ठीक है, डेथ ओवर्स थोड़े से उनको मार पड़ती है। अब यहाँ पर तो मोहम्मद वसीम का दोबारा मैं केस इस जैसे लाना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आपका एक बॉलर जो कि प्रीमियर बॉलर है वो कम बैक कर रहा है इंजरी के बाद, ठीक है, हो सकता है, डर ये भी था लोगों को, ये भी था कि इतने हाई वोल्टेज मैच में क्या पता शाहीन पूरे ओवर ना करा सके या उस तरीके से वो ओवर ना करा सके, तो आपको फॉल बैक के लिए एक और बॉलर तो चाहिए ही चाहिए था, फास्ट बॉलर, ठीक है, मतलब समझ नहीं आई कि कैसे इन्होंने ये मिस कर दिया पॉइंट।
देखिए यार फोर्थ बॉलर आपका मैंडेटरी है, ठीक है, आपको लाजमी खिलाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में फोर्थ बॉलर, ये इस तरह नहीं चल सकता तीन बॉलर्स पे आप रिलाय कर रहे हो। लेट्स सपोज जलाल वहां पे शाहीन आता है पहला ओवर कराता है, इवन नसीम भी, उसको वहां पे स्कोर पड़ जाता है, फिर पाकिस्तान क्या करेगा पहले ओवर
में? वही तो समझ नहीं आ रही, बेसिक
इश्यू स्टार्ट हो गए ना। यही चीज हमें नजर आई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले मैच में, जब पहले ओवर में मारता है फिन एलन स्टार्क को, स्टार्क को उसने रोक लिया फिर, क्योंकि उसके पास ऑप्शन थी, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है? इफ्तिखार को लाएगा वहां पे, वो तो फिर सीन ऑफ है उस तरह बॉलिंग में
यार हिस्टोरिकली।
अच्छा जलाल एक और चीज बड़ी अच्छी लगी जिसमें मैं आपसे बात करता हूँ कि अक्षर पटेल को जो लेके आए वो लोग बीच में, अब देखें ये वाला भी एक जो टेम्पलेट है पाकिस्तान की बॉलिंग का, खास तौर पे इस पे भी हमने काफी बात की है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स हमेशा आते हैं 7-15 के बीच में, ठीक है, अब वहां पे अक्षर पटेल को उन्होंने इसीलिए ऊपर भेज दिया ताकि ये स्पिनर्स को निकाल दे, थोड़ा डोमिनेट कर सके। वो आप देख सकते हैं ये भी एक हमारा सेटबैक है फोर्थ बॉलर ना होने की वजह से।
बहुत प्यारी पॉइंट आपने किया, बहुत प्यारा पॉइंट किया। देखो ये कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने भी ये बात की कि हमें पता था कि इनका ये पैटर्न है कि ये बीच में स्पिनर्स आएंगे, तो इस वजह से अक्षर पटेल को उन्होंने ऊपर भेजा। एशिया कप में भी हमने देखा था रविंद्र जडेजा ऊपर आ गए थे क्योंकि नवाज और शादाब से आपने बॉल करानी थी। सही है।
बिल्कुल बिल्कुल
अब देखो
बिल्कुल
यहाँ पे अशफाक अली साहब का एक और पॉइंट भी आता है, मैं राशिद लतीफ साहब को भी सुन रहा था, वो ये कह रहे थे जो बाबर से एक गलती हुई, गलतियों में से गलती एक ये हुई कि वहां पे जब आपकी 3 विकेटें गिरी हैं आप शायद एक दो ओवर करा सकते थे, खासतौर पे जब अक्षर बैटिंग कर रहा था आप इफ्तिखार से ओवर करवा सकते थे। ठीक है, वो आपने ओवर नहीं करवाया, वो फिर बाद में आपको मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं थी कि आप एंड में जब दो राइटी पांड्या और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तब तो आप इफ्तिखार से रिस्क ले नहीं सकते थे, वो भी एक चीज मिस कर दी। फिर देखो पैटर्न इतना सिमिलर है कि आपने बीच में स्पिनर
देखिए
से ही
जनाब
करानी
इस
है,
पे एग्जैक्टली
बात आपने बिल्कुल प्यारी की है।
बिल्कुल अच्छा जलाल इस पे एक और बात मैं बोलूंगा। देखें ऐसा भी होता है कि जब आपका एक प्लेयर ना अच्छी परफॉर्म कर लेता है ना बैटिंग में, अगर वो ऑलराउंडर हो तो फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी ज्यादा बूस्ट हुआ हुआ होता है। सही है। अब जब हम देखते हैं कि नवाज का स्कोर पड़ता है तीसरे ओवर में, तो वहां पे अगर इफ्तिखार
उमेर साहब का इंटरनेट कनेक्शन जी जवाब दे गया, लेकिन उमेर साहब बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि मतलब पैटर्न पाकिस्तान के एक बिल्कुल सिमिलर है कि यार 7 से 15 ओवर में हमने मेनली स्पिनर से बॉलिंग करवानी है और वहां पे मोहम्मद नवाज और शादाब के अलावा आपके पास एक फॉल बैक पेसर की ऑप्शन होनी चाहिए, क्योंकि हमने पता है कि पांड्या वगैरह स्पिनर्स को मारते हैं, वहां पे अगर मोहम्मद वसीम होते तो मतलब बहुत ही अच्छा हो जाता। लेकिन क्या कह सकते हैं यार, ये एक चीज है जो हम पहले भी अपनी पिछले एपिसोड्स में अगर आप लोग जाके देखें कोई 5 6 दफा हम बोल चुके हैं, हमने एक पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड या पॉसिबल 11 बनाई थी कि हमने उसमें बताया था कि एक्सप्लिसिटली पाकिस्तान ये वाली 11 खिलाएगा, एग्जैक्टली वही 11 खिलाई है, और फिर हमने अपनी एक आइडियल 11 बनाई थी कि वो आइडियल 11 ये होनी चाहिए, और उसमें हमने आसिफ की जगह मोहम्मद वसीम को खिलाया था जूनियर को। लेकिन अब यार क्या कह सकते हैं, अब या तो हम पागल हैं या फिर हमारी मैनेजमेंट का कुदरत के निज़ाम पे कुछ ज़्यादा ही चल रही है, क्या ही कह सकते हैं। एक दफ़ा ट्राई मारते हैं कि जी उमेर साहब वापस आएँ। उमेर साहब आवाज़ आ रही है आपको?
हाँ जी आवाज आ रही है आपको मेरी।
बिल्कुल
हाँ जी
सर,
मुझे आ रही है। आपको आ रही है आवाज?
कड़क आवाज़ आ रही है, कड़क।
कड़क आ रही है। चले यार अच्छी। अच्छा जलाल साहब एक और बात बताएं मुझे कि हम लोगों ने अपने थंबनेल पे भी लिखा है कि विराट वर्सेस हारिस रऊफ। शुरू के 2 ओवर 3 ओवर हारिस रऊफ के और आखिरी ओवर हारिस रऊफ का, और विराट कोहली की शुरू की बैटिंग और विराट कोहली की आखिरी 3 4 ओवरों की बैटिंग, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? तो वो जरा खुल के बताएं
यार देखो
क्योंकि
मतलब है, हमने पिछला एक एपिसोड की थी जिसमें याद होगा आपको हमने शॉर्ट भी बनाई थी कि टॉप 5 बैटर्स दुनिया के कौन से हैं 2019 के बाद। काफी लोग बाबर आजम को टॉप रेट करते हैं, हमने उसमें भी बोला था कि नहीं भाई विराट कोहली डैडी है, ठीक है वो अभी भी डैडी है, और उसने शो कराया यार। देखो इतना प्रेशर मैच, 90,000 से ऊपर क्राउड, आई बॉल्स, आपकी 3 विकेटें गिर जाती हैं बल्कि चौथी भी गिर जाती है, इंडिया वॉज रीलिंग यार, मतलब 10 ओवरों में 45 पे 4 आपके हैं, वहां से तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान मैच हार जाएगा या इंडिया मैच जीत जाएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है बुकीज ने भी बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा बुकीज का यार, मतलब है उस
बिल्कुल
बंदे ने जहां पे बॉल लीव करनी थी उसने टाइम लिया, आपको वो धोनी एरा याद आ गया, धोनी एरा याद आ गया जो विराट कोहली और धोनी जब बैटिंग करते थे और धोनी डीप एंड पे लेके जाते थे मैच को, शुरू में वो थोड़ा सा स्लो खेलते थे और सारे क्रिटिसाइज करते थे कभी कभार धोनी को कि यार ये क्यों टाइम ले रहे हैं, लेकिन उनको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव था कि मैं अगर एंड तक खड़ा रहा तो मैच बना जाऊंगा। लेकिन उमेर
बनाया
साहब
जाएगा बिल्कुल।
मतलब ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि विराट कोहली की T20 कैरियर की बेस्ट इनिंग्स थी, लेकिन जो आपने हारिस रऊफ की बात की
सही
है ना,
है
हारिस रऊफ ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करवाई है थ्रू आउट द मैच, और मैं कहता हूं जो उनको आखिरी दो जो छक्के पड़े हैं ना यार, खास तौर पे मैं आपको लास्ट वाला छक्का ज्यादा अच्छा लगा है, मुझे जो वो जो पहला छक्का हारिस रऊफ को मारा है ना जो उनके लास्ट ओवर में जो बैक फुट पे एक काइंड ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ मारा है, मतलब यार अनबिलीवेबल शॉट, कोई और प्लेयर मेरा नहीं ख्याल ये शॉट मार सकता था, मतलब विराट कोहली बस क्या कह सकते हैं, वही डिफरेंस है, हमेशा पाकिस्तान को फेंटी चाटते हैं ये बंदा क्या ही बोल
देखें यार
सकते।
इसीलिए तो विराट को किंग कहते हैं क्रिकेट का। देखें विराट को इसीलिए किंग कहते हैं क्रिकेट का है,
बिल्कुल
और
यार,
सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को ही जोश था कि विराट कोहली कमबैक मारे कमबैक मारे। उन अभी फिर सबको ठंड पड़ गई होगी उसकी वजह से कमबैक की है।
यार
अच्छा जलाल
वैसे
विराट कोहली का एक और भी बड़ा मजे का स्टैट था,
हाँ हाँ
विराट कोहली का स्टैट था कि देखिए उसने पहली 24 बॉले खेली और 14 रन मारे।
बिल्कुल
ठीक है अब सुने जरा, पहली उसने 24 बॉले खेलता है 14 रन मारता है, उसके बाद आखिरी 28 बोले खेलता है, 28 हाँ आखिरी 28 बोले खेलता है, उस पर उसकी स्ट्राइक रेट होती है 225 की। मतलब आप देखें यार क्या लेवल है बॉय का।
बिल्कुल यार, मतलब पेस जिस तरह की है ना उन्होंने,
ऐसे रिलैक्स होके छक्के मार रहे,
जबरदस्त किया यार, जबरदस्त। अच्छा अब कॉमेंट्स पीछे काफी रह गए हैं तो मैं इनको लेने की कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि हमने सारे
फिर इस पे थोड़ा और भी बात करते हैं।
बिल्कुल विराट कोहली पे भी बात करेंगे, विराट कोहली पे बहुत बात करनी है। अच्छा इस पे बात थोड़ी सी कर लेते हैं क्योंकि नवाज के बारे में काफ़ी लोग जो है ना सवाल कर रहे हैं। पहले क्रिकेट फीवर भाई का लेते हैं कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बाबर ब्रिंगिंग बैक नवाज टू लास्ट ओवर। आई थिंक ही डिड द राइट थिंग। इफ नवाज हैड बॉल्ड हिज लास्ट ओवर बिफोर द मैच वुड हैव बीन ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अच्छा इसमें पहले मैं उमर अपना बता देता हूँ, फिर आप बता देना कि लास्ट ओवर वाला डिसीजन सही था या नहीं था। देखो इस हद तक तो बाबर का डिसीजन ठीक था कि बाबर विकेट लेने की कोशिश कर रहा था तो वो मेन बॉलर्स को वो पहले लेके आया, विच इज़ फाइन। अटैकिंग हम अक्सर कहते हैं बाबर अटैकिंग कप्तानी नहीं करता, उसने काइंड ऑफ अटैकिंग कप्तानी की और उसने विकेट लेने की कोशिश किया, वो नहीं मिली हो जाता है, सही है। ये एशिया कप में भी यही हुआ था, बाबर ने मतलब पेसर से पहले ओवर करवा लिए थे विकेट के चक्रों में, उधर भी वो विकेट उस तरीके से नहीं मिली थी। लेकिन अब इस पे फिर मैं फॉल बैक पे जाऊंगा, जो बाबर का कसूर है, जो टीम मैनेजमेंट का कसूर है, वो ये है कि मोहम्मद वसीम टीम में क्यों नहीं थे, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है, अगर वो बंदा आता है, देखो मोहम्मद वसीम के होने पे पाकिस्तान हार जाता या लास्ट ओवर में मोहम्मद वसीम को भी 16 रन पड़ जाते, वो बंदा हजम कर लेता कि यार ठीक है चलो पाकिस्तान ने जो टीम खिलानी चाहिए थी वो खिलाई, उसके बावजूद हार गया। अब आपको फॉल बैक पे स्पिनर से ओवर कराने पड़ रहे हैं एंड में, तो फिर कसूर किसका है? कसूर तो कप्तान का आएगा और टीम मैनेजमेंट का आएगा कि आपने मैच में टीम ही नहीं सही खिलाई। क्या कहते हो उमर?
यार इसमें मैं ये बोलूंगा कि वही बात है कि बाबर थोड़ा एग्रेसिव हुए, उन्होंने वही स्ट्रेटजी में रखा कि हो सकता है अगर मैं फास्ट बॉलर्स ले आऊँ शुरू में तो हमारा हार्दिक या विराट कोहली आउट हो जाए, तो वो चीज़ उनकी एग्जीक्यूट नहीं हो सकी जिस वजह से नवाज को उनको यूटिलाइज करना पड़ा। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि जिस तरह हमारे पास एक एविडेंस था नवाज को आखिरी ओवर में पांड्या ने मारा हुआ था, और वही चीज़ मुझे था माइंड में, वो डाउट आ रहा था कि यार सामने हार्दिक खड़ा है और यहाँ पे नवाज आके बॉलिंग करा रहा है तो फिर छक्का मार देगा, तो वो वाली रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए ना मैं इफ्तिखार को वहाँ पे ट्राई कर।
लेकिन उसने हार्दिक को आउट तो कर दिया,
वो कर दिया। लेकिन जो पिछला एक डेटा आपको थोड़ा बता रहा था और जिस तरह उसने तीसरा ओवर करवाया था, और जैसे हम साथ साथ इफ्तिखार को देखते हैं कि उसने बॉलिंग मतलब उसने जो बैटिंग है काफी अच्छी की थी
यार, तो मैं आपकी बात ठीक है, लेकिन आई पर्सनली फील नवाज को इस वजह से भी ट्राई किया था क्योंकि अवे स्पिन हो रही थी और राइटी के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑब्वियसली ज्यादा मुश्किल होता है हिट करना बनिस्पत ऑफ स्पिनर के, तो मुझे लगता है कि
फिलहाल इसमें एक और चीज़ ये भी होती है ना कि आपके जो बैट्समैन जब सेट हो रहे होते हैं ना तो उसमें उनके माइंड में होता है यार हम लोगों ने ये वाले बॉलर्स को टारगेट किया हुआ है, अब 15, 16, 17, 18 ओवर्स में उनके माइंड में यही था कि यार एक ओवर स्पिनर का है और वो नवाज का ही है, हम लोगों ने उसको टारगेट करना है, तो हो सकता है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मैच काफ़ी हाई वोल्टेज मैच था, वहाँ पर इस तरह की रिस्क थोड़ी काम कर जाती
है। नहीं ठीक पॉइंट है आपका, लेकिन मेरा पॉइंट इस पे ये है कि यहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी। पहली बात वही, मोहम्मद वसीम को टीम में होना चाहिए था, वो नहीं थे, वो गलती पाकिस्तान की है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब बाबर ने 3 या 4 आउट कर लिए थे ना, उस टाइम के ऊपर इफ्तिखार से 1 या 2 ओवर करवा लेने चाहिए थे, खासतौर पर जब अक्सर बैटिंग करने आए थे वहाँ पर इफ्तिखार से करवाना चाहिए था, और उनकी इकॉनमी इन दोनों से बेहतर है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपका ओवर निकल जाता तो आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ती, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये उमर कि शाहीन आफरीदी स्ट्रगल कर रहे थे, नज़र आ रहा था उनकी पेस उस तरीके से नहीं है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि बाबर का ये पैटर्न है कि वो 19th ओवर हारिस राउत से कराता है। मेरा पॉइंट ये था कि आप मैच को इतना क्यों चांस क्यों देना चाह रहे थे, आप जो शाहीन से ओवर करवाया था वो हारिस से करवाना चाहिए था ताकि आखिरी 2 ओवरों में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता इंडिया के लिए, बट एनीवेज वो हो जाता है।
इस पीस से मुझे वैसे नहीं है कि मतलब 17th ओवर, देखें वही बात है कि 17th अगर शाहीन ने करा लिया तो 18th इसने करा लिया, अगर इस पे वहां पे हारिस करा देता 17 तो 18 शाहीन ने करा, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि
18 शाहीन ने कराया ना 19 हारिस ने कराया, तो आखिरी 3 ओवरों में 48 चाहिए थे, ठीक है।
हाँ हाँ,
अगर आखिरी 2 ओवरों में 40 चाहिए होते तो शायद प्रेशर इंडिया पे और ज्यादा होता, और आपको पता था कि 18th ओवर में इंडिया ने अब मारना ही है, ऑब्वियसली लास्ट 3 ओवरों में 50 रन अगर चाहिए तो आपने मारना ही है। हारिस को मारना ज़्यादा डिफिकल्ट था या शाहीन को उस टाइम के ऊपर मारना ज़्यादा डिफिकल्ट था। मुझे ये बाबर की कप्तानी से थोड़ा सा इख्तलाफ है कि जो जिस तरह हम हमेशा कहते हैं ना, सेट पैटर्न से एक सोच के आता है कि मैंने ये करना है और वो फिर वही कर रहा होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग काफ़ी कम नज़र आती है उसकी। ठीक है, तो ये मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है
इसमें, ये कह दी वो सही है, लेकिन मैं इस पर ये कह रहा हूँ कि ना वही बात है कि आपके पांच जो इनके पास बॉलर्स हैं ना वो सोल्यूशन नहीं है, एटलीस्ट एक और बॉलर पाकिस्तान को
पेसर होना चाहिए यार, पेसर
डेफिनेटली, पेसर डेफिनेटली, और वो मोहम्मद वसीम ही आइडियल पोजीशन बनती है उसकी, उसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह
बिल्कुल। ये कमेंट लेते हैं फिर हम अपनी शुरू हो जाते हैं, कमेंट्स पीछे रह जाते हैं। राजेश कुमार साहब कह रहे हैं भाई सब बोल रहे हैं मोहम्मद नवाज ने हरा दिया, वो अच्छा बॉलिंग कर रहा था, कोई गलती नहीं है, बॉल टर्निंग, हाँ ठीक है, नो बॉल टर्निंग पॉइंट था। यार देखो आप नवाज पे तो क्रिटिसाइज कर नहीं सकते मेरे नज़र में, आखिरी ओवर इस प्रेशर वाले मैच में स्पिनर के का हो तो बहुत टफ होता है यार, मतलब आप 9 out of 10 यही बोलोगे कि बैटिंग टीम बना जाएगी, खासतौर पे इतने प्रेशर वाले मैच में। हाँ उस पर एक भाई ने एक पॉइंट किया, उमेर मैं फिर आपका उस पर लेता हूँ कि एक पीछे एक बंदे ने कॉमेंट किया हुआ था कि रिजवान बहुत पीछे खड़ा हुआ था, एक मिनट आई थिंक वो वुडू पार्क ने किया हुआ था, वुडू पार्क कहते हैं मैंने देखा रिजवान नवाज के ओवर में बहुत पीछे खड़ा था। ठीक है, अब उमेर मेरा और राशिद लतीफ साहब का भी मैं सुन रहा था, बड़ा उन्होंने प्यारा हुआ एक पॉइंट किया, काफी लोग नवाज पे ये कह रहे थे कि यार इसने वाइड बॉल्स करा दी, इसने मतलब है फुल टॉस करा दी, क्यों कराई। अब उस पे उनका कहना ये था कि स्पिनर आदी होता है, यूज टू होता है कि विकेट कीपर आगे होता है और वो विकेट कीपर को क्योंकि उसकी आई साइड में आ रहा होता है तो वो टारगेट कर रहा होता है स्टम्प्स को। ठीक है, जैसे कीपर पीछे चला जाता है तो आपका वो जो यूज टू वाला सीन होता है ना वो थोड़ा खराब हो जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट जब आप विकेट कीपर पीछे चला गया, अब बॉलर को पता है कि बैटर आगे आएगा भी, बैट्समैन को पता है मैं स्टंप नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो अटैक करता है, और नवाज को पता था कि मेरे पास अब ऑप्शन ये है कि मैंने तेज बॉलिंग करानी है। सही है, तो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया था वो।
ना जलाल देखें, हम लोग ये आपने बड़ी प्यारी बात की है कि उसने तेज बॉल करानी है, हमने देखा है कि जब ये जो लास्ट दो बोले होती हैं वहां पे हारिस रऊफ को दो छक्के मार देते हैं विराट कोहली, तो आपका प्रेशर वहीं से काफी ज्यादा बिल्डअप हो गया। ठीक है, और ये बात विराट कोहली ने भी बोली है कि जब मैंने दो छक्के मारे उसके बाद पाकिस्तान टीम में काफी ज्यादा प्रेशर आ गया। वहां पे नवाज आता है बॉलिंग कराने के लिए, एक तो पहले उसके माइंड में होता है यार एशिया कप में भी फाइनल ओवर मैंने कराया, फिर उसके बाद शादाब आता है, बाबर आता है, कहता है कि बॉल तेज रखो, मतलब कि ये काफी ज्यादा फैक्टर्स थे नवाज के, मतलब वो माइंड में चल रहे थे। तो मेरे ख्याल से नवाज को इंडिविजुअली इस तरह क्रिटिसाइज करना
बिल्कुल नहीं,
ये मतलब क्रिकेट के एथिक्स के अगेंस्ट है थोड़ा।
यार स्पिनर अगर स्पिनर सीमा बॉल करा रहा है जो वो यूज टू नहीं है तो लाइन और लेंथ तो खराब होगी, सही है, फुल टॉस भी होगी, वाइडे भी होगी, तो मतलब ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। आपको ये शुक्र अदा करना चाहिए कि खैर शुक्र क्या अदा करना चाहिए, नवाज ने आपको लास्ट 2 महीनों के अंदर 3 मैच सोली अपने बलबूते पे जिताए हैं, सही है। अब उसका ये बनता ही नहीं था रोल जो उससे आप जबरदस्ती करवा रहे हो, कौन है आज के दौर में जो आखिरी ओवर स्पिनर से कराता है, बाबर 2 दफा करा चुका है, और उसकी रीजन क्या है कि आपके पास चौथा सीमर नहीं है। ठीक है, गौरव चौधरी साहब कहते हैं पाकिस्तान कप्तान बाबर को पता था कि 4 दिन से बारिश हो रही है फिर भी फोर्थ फास्ट बॉलर क्यों नहीं खेला है। भाई हमारा भी यही सवाल है, मुझे अब डर है कि आगे भी अकल नहीं आएगी
मुझे यार। अच्छा मजे की बात जलाल देखें, अब ऐसा सिनेरियो बना है ना कि फिर कोई बात नहीं कर रहा पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर जो लोअर मिडिल है, हाँ। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। ठीक है, फिर वही इस पे नवाज पे बात हो रही है, ठीक है शाहीन पे बात हो रही है, ठीक है यार 160 स्कोर भी इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो भी उधर मेरे ख्याल में पाकिस्तान मतलब के ये पाकिस्तान की बॉलिंग की थोड़ी क्या कह सकते हैं, वो थोड़ी जान है पाकिस्तान की बॉलिंग में जिस वजह से 160 रुक रहा है। मेन इशू आपका अभी भी है कि लोअर मिडल में भाई आपने जो खेलना है वो कैसे खेलना है।
नहीं हमने तो शादाब की इसे उम्मीदें मेरी तो ज़्यादा थी क्योंकि वो स्मार्टली प्ले करता है, लेकिन शायद प्रेशर इतना ज़्यादा होता है और पाकिस्तानी प्लेयर शायद इतने प्रेशर के यूज टू नहीं है। वो तो बिल्कुल अंडर प्रेशर शॉटें मारी उन्होंने, टेप बॉल वाली शॉटें मारी हैं तीनों ने, हैदर शादाब और आसिफ की क्या ही बात करें। नवाज वॉज लुकिंग गुड, नवाज ठीक खेल रहा था, लेकिन वही बात है क्रैम्प फॉर रूम किया हार्दिक पांड्या ने, उसको भी शॉर्ट बॉल पे थोड़ा सा स्ट्रगल कराया, लेकिन नवाज वॉज लुकिंग गुड। राजेश कुमार कहते हैं भाई मैं दुआ करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जिसको जितना है थोड़ा पहले 19th ओवर तक खत्म कर देना चाहिए, दिल धक धक मार रहा था।
बल्कि जलाल बड़े मजे की बात आपको बताता हूँ, मैं ये मैच देख रहा, ये वाला मैच देख रहा था तो वॉच अलॉन्ग कर रहा था ना यूट्यूब पर, तो 18 ओवर खत्म होता है, हारिस रऊफ को 2 ओवर پہ جب وہ ہارس اوور کے جب وہاں پہ دو چھکے پڑتے ہیں نا, تو اس کے بعد میری ایسی خراب حالت ہو جاتی ہے کہتے ہیں یار ویڈیو بند کرو, آرام سے بیٹھ کے سکون سے دیکھو, پانی پیو بیٹھ.
بھائی جن لوگوں نے وہ واچ لانگ نہیں دیکھا نا وہ جا کے دیکھے, عمیر صاحب وہ وراٹ کوہلی کے دو چھکے جب مارے ہیں نا, عمیر صاحب بھاگ گئے, سٹریم ہی بند کر دی. مطلب امیجن کریں بندے کے دل کے حالات کیا ہوں گے, کہ بندہ کہہ رہا تھا میں کیمرے پہ مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے یار, نکل لو یار. اے این زی صاحب کہتے ہیں کے ایل راہل کا کیا پرابلم ہے؟ سر مجھے تو دماغ کا پرابلم لگتا ہے, اللہ میں مطلب آئی ایم جسٹ جوکنگ, لیکن بات یہی ہے کہ ان کا مینٹل بیریئر ہی کوئی لگتا ہے. پلیئر تو وہ ایکسیپشنل ہیں, آئی پی ایل میں بھی ہم نے دیکھا ہے ٹاپ رن اسکورر ہوتے ہیں لیکن بڑے میچوں میں پرفارم نہیں کر پاتے. اور عمیر ہم نے ایک سوال میں آپ کو ادھر دوبارہ وہ پھینکوں گا بلکہ کیا کامنٹ بھی کروں گا, آپ نے ایک دفعہ میرے سے پوچھا تھا کے ایل راہل ورسز محمد رضوان کون سا بڑا بیٹسمین, اور میں نے آپ کو بولا تھا سوریا کمار ورسز رضوان. تو اس ٹائم کے اوپر میں رضوان کا تھا, پھر میں آہستہ آہستہ ٹلٹ مار کے سوریا کی طرف آنا شروع ہو گیا تھا, لیکن میں نے آپ کو بولا تھا کہ سوریا کمار کو ابھی یہ پروف کرنا ہے, ایک چیز رہ گئی ہے بڑے میچ میں بڑی پرفارمنس, وہ ابھی تک نہیں آئی سوریا سے, اور ان کے پاس آج پلیٹ فارم تھا نہیں کر سکے.
یار آج کی اگر ہم وہ گیم دیکھیں پاکستان انڈیا والی جو کل ہوئی ہے, اس پہ وہ بات ہے کہ اس طرح ایگزیکیوٹ نہیں کیا کیونکہ, لیکن پھر بھی یار میں تو ابھی بھی ریٹ سوریا کمار کو زیادہ کروں گا کیونکہ انہوں نے شروع میں کافی اچھی شاٹس ماری, مطلب کہ کافی انہوں نے اگریسو ہونے کی کوشش کی, تو میرا تو ابھی بھی ورڈ اسکائی کے ساتھ ہی ہے ویسے کہ.
ہاں نہیں میرا بھی ابھی امپیکٹ وائز ٹونی کے ساتھ ہے آبویسلی, رضوان تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر خاص طور پہ آسٹریلین کنڈیشنز میں. گورو چودھری کہتے ہیں بھائی جب پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا تب بال سوئنگ ہوئی, جب انڈیا بالنگ کر رہا تھا تو بال سیم ہوئی, اور شروع میں دونوں سائڈ کے فاسٹ بالر آؤٹ سائڈ تھے. بالکل سر, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں انڈیا کا ٹاس کا ایڈوانٹیج تھوڑا سا اس طرح مل گیا کہ وہ سوئنگ پاکستانی بالرس کو اس طرح نہیں ملی جس طرح انڈین بالرس کو شروع میں مل گئی تھی. خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے بھووی اور ارشدیپ کو سوئنگ تو مطلب کافی لیتھل ہو جاتے ہیں.
بھائی آپ کو یاد ہوگا میچ ساؤتھ افریقہ والا, انڈیا ورسز ساؤتھ افریقہ, جس میں ارشدیپ نے پہلے اوور کرائے تھے, ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہی تھا نا, وہ بڑے لیول کے کرائے تھے. باقی یار روہت شرما نے بڑا مطلب جو پوسٹ میچ کانفرنس ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ تعریف کی ہے وراٹ کوہلی کی, بیسٹ چیز ایور بولا ہے وراٹ کوہلی کا, اور میرے خیال میں یہ والی چیز وراٹ کوہلی کو بھی ریئلائز ہوئی, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جو میلبرن کی لیگیسی ہے اس کا فائنلی میں آ رہا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے شین وون کو لوگ یاد کرتے تھے, یا جب وہ برینڈن میکولم کو فائنل پہ آؤٹ کیا تھا مچل سٹارک نے, وہ والے سینیریوز کو میلبرن کے گراؤنڈ سے یاد کیا جاتا تھا. تو اب میرے خیال میں جو وراٹ کوہلی کی اننگ ہوئی ہے یہ والی, اس سے تھوڑا بہت مطلب ایک وہ لیگیسی اس کے پاس آ گئی ہے وہ والی.
نہیں نہیں بالکل آ گئی ہے. اچھا کامنٹس میں نے جلدی جلدی عمیر لینے ہیں کیونکہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اچھا جو لوگ ایسے ابھی دیکھ رہے ہیں وہ, جنہوں نے اگر سبسکرائب وغیرہ نہیں کیا ہوا ہمارا, اگر آپ کو کانٹینٹ اچھا لگتا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں, اور ڈسکرپشن میں سارے ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بھی موجود ہیں, ان کو بھی پلیز چیک آؤٹ کریں, اور اگر نہیں اچھا لگ رہا تو وہ کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, حمزہ ہیئر ورلڈ کا ایک کامنٹ میں شو کر رہا تھا جو کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ کس اس سینس میں, یہ اپنے ٹیم بنائی آئی تھنک یا کیا سین ہے. بابر اعظم, محمد رضوان, فخر زمان, شعیب ملک, آصف علی, عماد وسیم, شاداب خان, نسیم شاہ, محمد عامر, شاہین. بات آپ کی ٹھیک ہے, ٹیم آپ کی بہت اچھی ہے, لیکن مسئلہ سر وہی ہے کہ جو پلیئرز اب نہیں ہیں وہ تو اب نہیں ہیں, وہ آ تو سکتے نہیں ہیں. وڈو پاک کہتے ہیں ہاؤ ڈڈ نواز بال سچ اے فاسٹ بال انڈر پریشر, رضوان سٹڈ فار اوے. سر اب یہ تو اب کیا ہی بول سکتے ہیں بیچارہ, اگر آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ اسپنر سے ہی فاسٹ بالنگ کرانی پڑ رہی ہے تو فاسٹ بالر ہی کھلا لیتے, یہی تو رونا رو رہے ہیں بیچارے کا کانفیڈینس. نواز ہی تو آپ کا ایک میچ ونر پلیئر تھا, اس کا کانفیڈینس پہ ایسا ڈینٹ پڑ گیا ہے کہ وہ آپ نے بعد میں وہ دیکھی ہوگی عمیر, جو بابر اعظم نے اسپیچ کی تھی
بیچارہ. ہاں اس کو بلکہ بابر اعظم نے بھی کافی بک اپ کیا تھا اس والی ویڈیو میں کہ تو ٹینشن نہ لے, تو میرا میچ ونر ہے. تو میرے خیال میں اچھا جیسٹر تھا,
یہ جیسٹر تو اچھا تھا لیکن ٹھکوا کے اینڈ میں اس کو بول رہا ہے تو میرا میچ ونر ہے. بھائی یہ کانفیڈنس بندے کا آپ نے ڈینٹ کروا دیا ہے اب آپ. خیر اچھی بات ہے, بابر کی سپیچ ہمیشہ میچ کے بعد اچھی ہوتی ہے. خیر دیکھتے ہیں. راجیش کمار کہتے ہیں بھائی تمہیں لگا کہ انڈیا جیتے گا, ہم تو امید گواہ بیٹھے تھے. یار میں نے, مجھے لگا نہیں میچ کے درمیان, میں عمیر سے پہلے ہم پچھلی ایپیسوڈ میں نا پوچھا تھا, عمیر کہہ رہا تھا پاکستان جیتے گا, زیادہ چانسز پاکستان کے, میں کہہ رہا تھا انڈیا کے پاس زیادہ چانسز ہیں. تو میچ کے درمیان تو مجھے آبویسلی لگ رہا تھا پاکستان جیتے گا, کیونکہ 10 اووروں میں 45 پہ 4 اگر آپ کی ٹیم کے ہوں تو वहां से आप ऑब्वियसली पाकिस्तान ही फेवरेट था।
बिल्कुल यार, ESPN पे भी मैं देख रहा था साथ साथ, पाकिस्तान की प्रोबेबिलिटी 84 आ रही थी,
हाँ
मतलब के लास्ट 5 ओवरों में ना, तो बस एकदम विराट कोहली ने अपनी क्लास
जज्बात
दिखाई
बदल
है।
गए, हालात बदल गए एकदम। गौरव चौधरी भाई कहते हैं
ये वाले मैचेस होते हैं जलाल, जहां पे ना एक जो मास्टर क्लास होती है नजर आती है प्लेयर की,
बिल्कुल
मतलब के वो वाली क्लास अभी मेरे ख्याल में बाबर आजम की टेक्निक वाइज कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इस लेवल तक पहुंचने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा।
बिल्कुल नहीं, सही बात है। गौरव चौधरी भाई कहते हैं भाई विराट ने खुद कहा है कि ये उनकी T20 कैरियर की बेस्ट इनिंग है। बिल्कुल सर, उन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाली और इसका कंपैरिजन किया तो उन्होंने बोला कि यार मतलब जो मैच सिचुएशन हो गई थी और जिस तरह की, खासतौर पर वो अगर आप उनके लास्ट 2-3 साल देखें तो वो स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद आके इतनी क्रिटिसिज्म उन पर हुई और फिर इस तरह की करना। तो मैं उमेर पीछे जब हम विराट कोहली की बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा था, जब आप कह रहे थे कि विराट कोहली हमारे खिलाफ कर गया जब लोगों को ठंड पड़ गई, एक चीज़ अब पाकिस्तानियों के अंदर मैंने कॉमन देखी है, एटलीस्ट मेरे अंदर तो है, कोई और स्कोर करता ज़्यादा दुख होता, विराट कोहली की या तो मैं आदत पड़ चुकी है या पाकिस्तानियों को विराट कोहली अच्छा इतना लगता है कि विराट कोहली स्कोर करता है तो इतना दुख नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल ये पांड्या चेस कर देता या सूर्य कुमार चेस कर देता तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा दुख होता। विराट कोहली पे इतनी मुझे हुआ नहीं, मज़ा आ रहा था यार उसकी बैटिंग देख के, थोड़ा बंदा कहता है यार क्या
यार,
प्लेयर है
मज़ा
यार।
तो नहीं, उसको जब खेलते हुए देखते हैं वो तो मज़ा आता है, लेकिन यार जलाल ये तो एक मेरे ख्याल नेचर एंड थोड़ा नेचुरल सी बात है, पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह खेले तो बुरा तो लगता है यार, खाम
बिल्कुल
खाम बुरा लगता है।
एक एप्रिसिएशन तो बनती है ऐसे विराट कोहली के लिए, नहीं
बनती है। अच्छा आप वो भी देखें, बीच में वो भी जलाल बड़ा हुआ कि फुल टॉस वाली बात जो आई नवाज की कि उस पर थर्ड अंपायर वाले डिसीजन क्यों नहीं किया गया बाबर, तो वो मैं वसीम अकरम को सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि इस तरह आप थर्ड अंपायर पे डिसीजन नहीं देते नो बॉल का अंटिल एंड अनलेस वॉलीबॉल पे बंदा आउट ना हुआ, तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं आईसीसी
यार। वो बात तो ठीक है, असल में देखो नो बॉल थी या नहीं थी उस पर हर किसी की अपनी राय है, मेरा ख्याल है नो बॉल बहुत टाइट दी है, लेकिन जिस अंदाज में थी वो नो बॉल वो गलत थी। मतलब लेग अंपायर नॉर्मली आप देखते हो कि वो जैसे उसको लगता है कि बॉल वेस्ट से ऊपर थी वो फौरन अपना हाथ करता है, फिर हमने ये देखा कि उन्होंने डिलेड नो बॉल दी और उस पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि बाबर ने भी फिर बोला अंपायर को जाके कि यार ये आप क्या कर रहे हो, मतलब वो अच्छा नहीं लगा। और इतने बड़े मैच में जब कंट्रोवर्सी आ जाती है मैच के एंड में तो वो फिर ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता मैच को, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ना वो नो बॉल से पाकिस्तान मैच हारा ना उन वाइडों से मैच हारा, पाकिस्तान मैच इतना डीप लेके जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे, पाकिस्तान अपनी अपनी वजह से हारा मैच। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा करना चाहिए उमेर, देखो न्यूजीलैंड की टीम के साथ जो वर्ल्ड कप फाइनल में हो गया उसके बाद उन्होंने शोर नहीं बचाया, हालांकि पूरी दुनिया कह रही थी भाई न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप नहीं हारता यार ये वाला, ये ज्यादती हो रही उनके साथ, स्टिल उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, तो अगर आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन चला भी गया तो उसको पी जाना चाहिए मेरा ख्याल है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना।
हाँ यार ये तो मतलब छोटे छोटे मूवमेंट है, बाकी जो मेन इशू है पाकिस्तान का वो तो एक तो जो नजर आ रहा है वो फोर्थ सीमर का है और दूसरा इशू जो है वो है लोअर मिडल का, तो ये दो चीजें इनको चाहिए कि नेक्स्ट मैच में अपना प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट करें और किसी स्टेट ऑफ इग्नोरेंस में ना रहे,
वो तो कुदरती निजाम चल रहा है। ओ भाई कमेंट्स लेने दे, कमेंट्स लेने दे,
ले ले ले।
राजेश कुमार कहते हैं भाई 8 बॉल 28 रन बहुत होता है, विराट का की तारीफ तो करना पड़ेगी। बिल्कुल सर, हम तो
सर विराट के फैन है हम इधर,
बिल्कुल सर
तारीफ। हमारी पुरानी एपिसोड देखें, हम लोग बल्कि सबसे ज्यादा कह रहे थे विराट कमबैक मारे,
हम साथ हमेशा ये जरूर कहते थे पाकिस्तान के खिलाफ ना मारे, अब पाकिस्तान के खिलाफ ही चलना शुरू हो गया दोबारा यार, ये ज्यादती है थोड़ी सी, लेकिन स्टिल यार चलो ठीक है, अच्छी बात है चल रहा है, तो विराट कोहली जब तक चलता है ना तो क्रिकेट लाइमलाइट में रहती है, ये बात तो है। इशफाक अली कहते हैं ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम खुद को कव्वा और विराट कोहली को उल्लू समझ बैठा है बेचारा बाबर। नहीं यार विराट को तो वो बड़ी रिस्पेक्ट वैसे भी देता है और वो उसने बाद में उसकी तारीफ भी बहुत की है कि प्रेशर प्रेशर ही विराट कोहली का डिफरेंस यही है बड़े खिलाड़ी में। देखो केएल राहुल के बारे में कहते हैं शायद टैलेंट वाइज केएल राहुल और रोहित शर्मा विराट कोहली से ज्यादा हैं क्योंकि उनके पास शॉटें अलग अलग किस्म की हैं, टाइमिंग बहुत जबरदस्त है, लेकिन उनमें जो डिफरेंस है उमेर बड़े मैच में बड़े स्टेज के ऊपर प्रेशर हैंडलिंग वो विराट कोहली बेस्ट है,
बेस्ट है विराट कोहली।
गौरव भाई कहते
बाबर
हैं
आजम ने ये भी बोला ना कि बाबर आजम ने ये भी कहा, उससे बोला ना कि यार विराट कोहली ने इतना प्रेशर हैंडल किया इस तरह हुआ, तो कहते हैं यार कि वो इसीलिए तो प्लेयर है, कि वो इसीलिए तो किंग ऑफ क्रिकेट उसको उसको यूं कहा जाता है, तो वो बात जेन्युइन है सारी।
बिल्कुल जेन्युइन है सर, बिल्कुल जेन्युइन है। गौरव भाई क्या कहते हैं, भाई जब इफ्तिखार और शान ने 12 ओवरों में 90 रन कर दिए थे, वहां से शादाब हैदर आसिफ नवाज की गैर जिम्मेदार बैटिंग की वजह से स्कोर 15-20 रन शॉर्ट। बिल्कुल सर, ये हमने यही एग्जैक्ट बात की है। देखो उसमें मैं नवाज को थोड़ा से बोलूंगा, नवाज वॉज लुकिंग फाइन, बट जो शॉटे मारी है ना उन तीन बंदों ने, वो तो आसिफ को तो
जनरल ये वाले मौके पे मैं ये बोलूंगा, देखो आपको आपको पता होता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारी वीकनेस क्या है। हमने देखा कि यार शॉर्ट पिच बॉल जब आती है पाकिस्तानी खासतौर पे मिडल ऑर्डर के पास, वो लोग फेस सही नहीं कर सकते, और इस टाइम हार्डे जो हार्दिक पांडे है उसकी बहुत ही अखीर किस्म की शॉर्ट पिच बॉल है, सही है, तो इनको चाहिए था पांड्या को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते, सही है, उसकी बॉलें निकाल देते, उसके बाद थोड़ा सा एग्रेशन दिखा देते।
यार अब क्या ही कह सकते हैं अभी उस टाइम के ऊपर। खैर एक चीज मुमैर मैं ये बोलूंगा, जब 90,000 बंदा क्राउड में बैठा होता है, हम मेरी और आपकी बातें करना आसान है, हम बैठ के तो हमने तो बात ही करनी है ना, लेकिन उस टाइम के ऊपर तुझे खुद पता है जब तू भी मैच खेलने, टेप बॉल का मैच भी खेलने जाता है ना, तो ग्राउंड में बंदा प्रेशर में उसको उस तरह की थॉट्स नहीं आते जितना हम लोग तो सोफे पे बैठ के बेड पे लेट के मैच देख रहे होते हैं, तो हमारी थिंकिंग काफी क्लियर होती है।
तो मैं आप इस बात पे फिर ये बोलूंगा, देखे वो बात मैं मानता हूँ, वो वाला साइकोलॉजिकल वो जो नर्व्स है वो शायद वो वाली नर्व्स नहीं है मेरे पास नहीं है, और शायद वो नहीं होंगी किसी और, लेकिन ये जाहिर है यार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो मेरे ख्याल में इनकी प्रॉपर वो वाली भी ट्रेनिंग होनी चाहिए।
यार देखो विराट कोहली और बाकियों में डिफरेंस सर ये नर्व्स हैंडलिंग का ही है, बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस जो बंदा कंसिस्टेंटली देता है वो बड़ा प्लेयर है, और विराट कोहली इसी वजह से अच्छा है कि वो बाकी प्लेयरों से प्रेशर अच्छा हैंडल करता है। राजेश कुमार कहते हैं भाई साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे का मैच नहीं हुआ तो पॉइंट कैसे मिलेगा, पॉइंट शेयर हो जाएगा। अच्छा अब इधर मैंने बात तो करनी थी बाद में उमैर, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया, तो यार क्या साउथ अफ्रीका से अनलकी टीम इस रुए जमीन पर है दुनिया में
वर्ल्ड कप
कभी कोई पैदा हुई है, कोई आई है, हर दफा गंदी होती है बेचारों के साथ है।
सही बात है यार, आज तो खैर बहुत ज्यादा गंदी हो गई है कि देखे मैच जीते हुए थे सही है, और बस आखिर में बारिश आ गई तो बस मैच।
यार अब इस पे आईसीसी के रूल्स के बारे में भी बात हो रही है उमेर, आईसीसी के रूल्स के बारे में ये बात हो रही है। देखो पहले तो मैच 9 ओवरों का रिड्यूस हो गया, उस पे भी लोग टॉस और उसकी सारी बातें कर रहे हैं कि जब बारिश हो जाए करे तो आपको दोबारा टॉस कराना चाहिए और इजाजत होनी चाहिए प्लेयरों कैप्टन्स को कि वो अपनी टीम चेंज कर सके क्योंकि अब मैच सिनेरियो चेंज हो गया, सही है। खैर उस पर तो बात की बात आ जाती है, लेकिन असल बात ये हो रही है कि डकवर्थ लुइस ये कह रहा था कि 5 ओवरों के बाद आई थिंक 50 रन एटलीस्ट चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, वो उन्होंने 3 ओवरों में वो टारगेट अचीव कर लिया था, ठीक है, लेकिन रूल्स के मुताबिक 20-20 ओवर्स में सेकंड इनिंग्स में एटलीस्ट 5 ओवर्स जब तक नहीं होंगे तब तक रिजल्ट नहीं होगा मैच का, ठीक है। अब 3 ओवरों में साउथ अफ्रीका वो अचीव कर चुका है टारगेट जो 5 ओवरों में करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 5 ओवर्स हुए नहीं तो मैच कॉल्ड ऑफ हो गया। मतलब यार ये मुझे WWE वाले वो मैचेस याद आ जाते हैं जब आपके वो आप देख रहे होते थे कैमरे में प्लेयर चीटिंग कर रहा है और अंपायर जो है वो रेफरी जो है वो बेचारा गिरा हुआ इधर उधर उसको नजर नहीं आ रहा और वो किसी और के खिलाफ डिसीजन दे देता है। मतलब अजीब यार, मतलब जोक ही बनाया हुआ कसम खुदा कि इतने बड़े स्टेज के ऊपर मैच हो रहा है।
नहीं यार ये बड़ी जाती, अच्छा ये मेरे ख्याल में एक दफा पहले भी हुआ है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैच में चैंपियंस ट्रॉफी में,
काफी दफा हुआ है ये, पीछे भी होता रहा है, ये मजाक ही बन गया। राजेश चौधरी साहब, हाँ राजेश कुमार को कह रहे हैं बिल्कुल 1-1 पॉइंट मिलेंगे दोनों को, जिम्बाब्वे का फायदा हो गया है और शायद पाकिस्तान का भी फायदा हो गया है, जिसका क्रिकेट फीवर साहब कह रहे हैं टुडे साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे गॉट 1-1 पॉइंट विच विल बी एन एडवांटेज फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल सर, लेकिन अब आप ये दुआ करें कि कहीं बारिश पाकिस्तान के मैचों को भी ना, जो थोड़े से कमजोर टीमें हैं उनके खिलाफ अगर हो गया तो फिर हमारा भी सीन बैड हो जाएगा, क्योंकि बारिश तो आगे भी है। जुनेद जावेद कह रहे हैं फहीम कैन प्ले रोल ऑफ हार्दिक। अब जुनेद भाई, अब फहीम तो है नहीं स्क्वाड में और उसको चांसेस जब मिले थे तो फहीम ने कौन सा कोई बैटिंग में कभी मैच जितवाए हैं उसने, बॉलिंग ठीक है उसकी थी लेकिन बैटिंग तो उसकी डिसअपॉइंटमेंट ही थी और परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम से बाहर हुआ था। आई थिंक जब आपकी टीम में मोहम्मद वसीम मौजूद है तो फिर आप इधर उधर क्या देख सकते हो
ये वाली डिबेट जो ये बात करें ना, ये वाली डिबेट स्टार्ट होगी मेरे ख्याल में पीसीबी की
वर्ल्ड कप के बाद?
जब खत्म होगा वर्ल्ड कप के बाद, उस टाइम आमिर जमाल ठीक है, मोहम्मद वसीम और आपका फहीम, इन तीनों पे मेरे ख्याल में इनके बीच में टसल आएगी कि कौन आएगा खेलने के लिए।
राजेश कुमार कहते हैं भाई एक पॉइंट साउथ अफ्रीका का नुकसान हो सकता है आगे, लग रहा है। बिल्कुल सर, साउथ अफ्रीका का नुकसान होता है, और ये जैसी कमेंट्स उमेर मैं लेता हूँ ना, तो नुकसान अब इंडिया पाकिस्तान का तो बड़ा डिस्कस कर दिया हमने काफ़ी हद तक, लेकिन हमने वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच की बात करनी है, क्योंकि उसमें ना
वो तो करनी है,
बड़ा
उसका
वो
तो
इम्पोर्टेंट मैच हुआ है। बुडुपा कहते हैं नवाज बॉल सही करता है पर उसकी बॉल टर्न नहीं होती है। सर टर्निंग के लिए विकेट की भी थोड़ी सी चाहिए होती है ना मदद, वो मिल नहीं रही थी। मसूद जब जब 50 मारता है पाकिस्तान हार अच्छा मसूद भी और इफ्तिखार भी, इफ्तिखार की 3 इनिंग्स हैं आई थिंक, 2 में 50 है ऑस्ट्रेलिया में बात कर रहा हूँ, और 1 में 45 है, और तीनों पाकिस्तान हार है तो ये भी है। अच्छा भाई आईपीएल में रॉबमन पावल को इसी तरह नो बॉल दी थी इसलिए ये रूल्स में है। ये नो बॉल की बात कर रहे हैं आई थिंक, नवाज अली नो बॉल की बात कर रहे हैं। सर दी होगी लेकिन बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है जिस, एक तो वो नो बॉल बहुत टाइट थी, विराट कोहली फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, क्रीज से बाहर थे थोड़ा सा, मतलब अगर आप देखें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वॉज तकरीबन एक आध फुट आगे था, और बॉल ने अभी ट्रेवल करना था थोड़ा सा, तो एक वो टाइट कॉल थी। मतलब आइदर वे जा सकती थी, मैं ये नहीं कह रहा कि नो बॉल नहीं थी बिल्कुल, मतलब आप दे देते हैं, लेकिन जिस तरीके से दी वो मुझे लगता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था। और उसके बाद पाकिस्तान अनलकी रहा ना, देखे उस नो बॉल के बाद ये हुआ कि फ्री हिट मिली और फिर वो 3 रन भी बन गए, तो इस वजह से थोड़ा सा वो अनलकी तो रहा है अगर आप बोलेंगे पाकिस्तान तो। क्या कहते हैं राजेश कुमार, लेकिन दिल खुश कर दिया आई अहमद क्या सिक्स मारा, इफ्तिखार अहमद, अच्छा बिल्कुल, मैं बोलूं आई अहमद कौन है
काफी ज्यादा मतलब बातें होती थी, लेकिन उसने छक्के भी बड़े मजे के मारे हैं यार, और छक्के जलाल ऐसे नहीं थे कि आप एक ओवर में एक मार रहे हो एक ओवर में दो मार रहे हो, उसने उसने कंटिन्यूस ना उसने कोशिश की, तो ये बड़ा एक अच्छा नजर आया कि यार चलो वही एक ओवर था जिस वजह से हमें उम्मीदें नजर आई थी 170 180 की।
देखो 12वें ओवर में पाकिस्तान ने अक्षर को 21 मारा और 12वें ओवर में इंडिया ने नवाज को 20 मारा, ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ कि अक्षर ने उसके बाद बॉलिंग नहीं की क्योंकि हार्दिक पांडे अवेलेबल थे, पाकिस्तान को नवाज से करानी पड़ी क्योंकि मोहम्मद वसीम अवेलेबल नहीं थे। बात फिर वही आ रही है हर जगह से, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, फोर्थ सीमर चाहिए आपको भाई। SS98 साहब थोड़ी सी बजा रहे हैं राहुल की, वो कह रहे हैं राहुल नेदरलैंड के अगेंस्ट 100 मार देगा अच्छा राजेश कुमार कहते हैं इफ्तिखार अहमद LBW नहीं होता तो क्या करता पता नहीं, मजा आ गया सिक्स देखकर, उसका भी तारीफ तो बनता है। बिल्कुल सर, उन पर क्रिटिसिज्म हो रही थी बीच में, हमने भी क्रिटिसिज्म उनके ऊपर की थी, लेकिन मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनको बैक किया, टीम मैनेजमेंट ने बैक किया और ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि उनका रिकॉर्ड अच्छा था। तो
यार ये वाला, ये जो बैक वाला क्रेडिट है ये तो मेरे ख्याल में पूरी मैनेजमेंट को जाता है, रमीज बाबर ये मोहम्मद वसीम के हर एक प्लेयर को बैक किया है, कोई ऐसे हमें नहीं नजर आई वो ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसी पॉलिटिक्स हो, हर चीज मतलब बैक कर रहा है बाबर आजम बड़ा फिट अच्छे तरीके से
बिल्कुल
वर्ल्ड कप तक तो
कुकिंग लवर्स कह रहे हैं लड़कों ने स्ट्रगल किया जो नजर भी आ रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सब ठीक करेंगे, होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल सर ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि लड़के हारा है पाकिस्तान, जैसा भी है लड़के हारा है, और अगर आप देखो तो बॉलिंग जब पाकिस्तान कर रहा था तो 17 ओवर तक पाकिस्तान ही जीत रहा था, तो वही वाला मैच याद आ गया उमेर जो हम पहले भी एक एपिसोड में जिक्र कर रहे थे, माइकल हसी
कभी कभार जलाल ऐसा होता है कभी कभार ऐसा होता है हम लोग कोई बात करते हैं बड़ी कोई वो एकदम हो जाती है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे यार देखो बेशक पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते मैच जाना चाहिए आखिरी बॉल तक, तो देखें हुआ वही है लेकिन बस रिजल्ट हमारा
बस हुआ यही है। उमेर साहब लास्ट ओवर से पहले स्ट्रीम छोड़ के भाग गए, ये बात जरूर देखेगा जाके, उमेर साहब ने ऐसे कल्टी लगाई है ना कि भाई मैं आखिरी ओवर नहीं देख सकता, भाग गया स्ट्रीम से। क्रिकेट व्यूअर कहते हैं दे रियली नीड टू थिंक अबाउट आसिफ अली हैदर अली एक्सेट्रा, यू कैन पिक आसिफ अली एवरी टाइम बाय सेइंग दैट ही इज अ मैच विनर, व्हेन इज द लास्ट टाइम ही फिनिश्ड द गेम फॉर अस, लास्ट वर्ल्ड कप आई थिंक एशिया कप में यार एक मैच फिनिश किया था कैच ड्रॉप होने के बाद, वो भी खैर फिनिश नहीं किया था आउट हो गए थे उस पर भी, बात ठीक है आपकी यार ये
बात सही है, आसिफ है थोड़ी इंपैक्ट उसका नजर नहीं आ रहा टीम में।
देखो शाहिद आफरीदी इस जगह पे खेलते थे और शायद आफरीदी से भी उमेर यही होता था कि सारे लोग कहते थे बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी पता नहीं आफरीदी चलेंगे नहीं चलेंगे, सेम आसिफ अली के साथ हो रहा है, लेकिन शायद आफरीदी वॉज अ वेरी कंसिस्टेंट गुड स्पिन बॉलर, ठीक है, वो आसिफ अली को वो एडवांटेज नहीं है ऑलराउंडर का, अगर होता तो वो ठीक है।
बस एक और बात भी ना जलाल, आसिफ अली की वीकनेसेस तो सबको पता है, मतलब कि वो उसका क्या है, वो किस, वो कौन सी बॉलों पे आउट होता है, तो वो चीज एक है, इसलिए आसिफ का थोड़ा ना डामाडोल हो रहा है सी।
हाँ गौरव चौधरी कहते हैं वो 3 रन पाकिस्तान के प्लेयर की नॉन अवेयरनेस की वजह से मिले, क्योंकि फ्री हिट पर डेड बॉल ओनली जब होती है जब कीपर के पास है, या डेड बॉल उस तरह नहीं होती जो मैंने रूल पढ़ा है ना, क्योंकि काफी ज्यादा रूल आ रहे थे, अगर मतलब फ्री हिट का मतलब ये है कि स्टम्प्स इररेलेवेंट है, स्टम्प्स इररेलेवेंट है, डेड बॉल शायद तब होती तब भी ना होती, मतलब इररेलेवेंट है। आपको याद होगा वो एक फुटेज भी फ्लोट कर रही है कि ब्रैड हेडन, शोएब अख्तर ने बॉल कराई थी फ्री हिट पे और ब्रैड हेडन स्टम्प से पीछे चले गए थे, स्टम्प्स पे बॉल लगी थी और वो भागना शुरू हो गए थे, वो बात नहीं है कि बात ये है कि नो बॉल जिस तरीके से दी गई उस पर बात हो रही है और उसकी वजह से फिर आगे। तो मैं साहब आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी जी आ रही है।
अच्छा मेरा कोई कैमरे का यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, आप कंटिन्यू करें, मैं जरा कैमरे का इश्यू सॉल्व करता हूँ।
नहीं इस पे वो जो आप बात करें वो जो बाय पे गया स्कोर, वो तो मेरे ख्याल में अभी डॉक्टर नुमान ने भी कोई ट्वीट की थी ये वाले रूल के बारे में कि ऐसा रूल आया हुआ है कि जिसपे मतलब के स्कोर यू बन जाता है बाय में अगर विकेट ना गिरे तो। तो बाकी जलाल साहब आप कौन से कमेंट में थे? मेरे पास विंडो मुझे खोलनी पड़ेगी, एक रुके मैं देख लेता हूँ।
मैं था सर गौरव चौधरी के 3 रन्स के ऊपर, उसके बाद राजेश कुमार का था।
राजेश कुमार कह रहे हैं भाई हमको पहले लगा इंडिया पाकिस्तान का मैच एंड तक जाएगा। यार बात आपकी सही है राजेश भाई, हमें भी ऐसे ही लगता है, लेकिन इतना क्लोज ना जाया करे यार, एटलीस्ट एक ओवर पहले जीत जाया करे ताकि पाकिस्तान में हम लोगों की हालत खराब ना हो और इंडिया वालों की भी वहां पे हालत खराब ना हो। लेकिन देखें ये अच्छी बात है कि इस तरह का मैच अब हमें देखने को मिलता है, आज से 5-6 साल पहले जब हम देखें पाकिस्तान के जब मैचेस होते थे इंडिया के साथ तो वहां पे क्लीन स्वीप होती थी, इंडिया मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांग होती थी। तो अब एक ये है कि चलो जब हम भी देखते हैं पाकिस्तान से तो हमें लगता है यार चलो पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर लेगी, तो ये एक पॉजिटिव है। फिर उसके बाद SS98 है, ये कह रहे हैं कि विल रिजवान बी सक्सेसफुल इन ऑस्ट्रेलिया, His technique in Australian conditions will be tested. अच्छा यार ये आपने बड़ी अच्छी बात की है SS98, इस पे मैं एक आर्टिकल पढ़ा था क्रिकेट विज का, उसमें उन्होंने ना सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं जो भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस के हैं वो उन्होंने फ्लोट किए हुए वहाँ पे। तो मजे की बात उसमें ये है कि जोन से पाकिस्तान के जोन से प्लेयर्स का जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे कि कौन कौन से प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलते रहे, तो उसमें सेकेंड नंबर पर आ रहे हैं रिजवान, मतलब के फर्स्ट का खैर मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट पे कौन है, आप भी सुन के बड़ा ज्यादा शॉक हो जाएंगे। सेकंड पे आ रहा है रिजवान के जो रिजवान की एवरेज आई थिंक 24 है 26 है कुछ इस तरह की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। और जो मजे की बात इसमें ये है कि फर्स्ट में वो बंदा है कि वो वाले बंदे को हर कोई क्रिटिसाइज करता रहा, खुशदिल शाह है। खुशदिल शाह की ऑस्ट्रेलिया में 160 की स्ट्राइक रेट है, ठीक है, और उसकी एवरेज भी आई थिंक 41-42 की है ऑस्ट्रेलिया,
लेकिन उस पे सैंपल साइज छोटा है ना उमर, सैंपल साइज छोटा है उसमें।
ये बात नहीं, खुशदिल का सैंपल साइज छोटा है, बाकी रिजवान वगैरह का सही है।
लेकिन देखो खुशदिल का भी हमने शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम देखी है। अच्छा ये वैसे मेरा पहली दफा हुआ है, मेरा कैमरा हीट अप हो गया तो हो सकता है ये दोबारा जो है ना ये बंद हो, लेकिन आगे कंटिन्यू करते हैं, आवाज आती रहेगी मेरी खैर। अच्छा आपने ये ले लिया? हाँ हाँ वीडियो ऑन है लेकिन कैमरा जो है ना वो कहता है भाई मैं हीट अप हो गया, पता नहीं पहली दफा हुआ वैसे। ये वाला लिया कमेंट शाहिद अनवर
वाला, जलाल वो पाकिस्तान वाले मसले यूएस में तो ट्रांसफर नहीं हो गए?
देखो मेरी वीडियो गई नहीं उस तरीके से, कम से कम आवाज तो आ रही है ना, इंटरनेट नहीं गया मेरा, कैमरा हीट अप हो गया भाई।
यूएस जिंदाबाद इस बात में है। अच्छा आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं?
अच्छा वैसे अगर मेरी बाय द वे इंटरनेट गया ना तो ये स्ट्रीम बंद हो जाएगी क्योंकि चल यहाँ से रही है। ये बात भी है। शाहिद अनवर भी बोलता है गरीबों काम पे हो बट अभी भी टीम काम पे नहीं है। अच्छा ये मुझे ऐसे समझ नहीं आई शाहिद अनवर कौन से वाले शाहिद अनवर की बात कर रहे हैं?
शाहिद अनवर ये उसकी तो नहीं बात कर रहे, मेडिकल जो डॉक्टर है इनका है फिटनेस वाला।
मुझे सही पता नहीं यार। दोबारा हमजा भाई, अब दोबारा ज़रा बताइएगा यार इस पे। गौरव भाई अभी जब तक हम स्ट्रीम कर रहे हैं तब तक तो ऐसी हमें खबर नहीं मिली, लेकिन हम इसको डबल चेक कर लेंगे। अभी तक तो शाहीन अफरीदी की इस तरह की खबर नहीं आई कि वो अनफिट हो गए हैं। उमर साहब आप अगर देख सकते हैं तो चेक कर लें वैसे।
मैं
लेकिन
देख लेता हूँ साथ साथ,
अच्छा
मेरा नहीं ख्याल
अगर
है।
ओवरऑल बात करें, हमने सबकी बात की लेकिन हमने इंडिया की बॉलिंग किस तरह बात नहीं की। शामी वॉज गुड, अर्शदीप वॉज मतलब शुरू में तो वॉज वेरी गुड, भूवी मतलब काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था, अगर आप फिगर्स देखो यार मतलब जबरदस्त।
मूवी ने बहुत
हार्दिक
सही है, सच
पांड्या
में
इफेक्टिव, अक्षर पटेल का बुरा दिन था बस, मतलब अगर देखा जाए
यार।
तो।
अक्षर पटेल के जलाल पिछले 3-4 मैचेस से अच्छा नहीं जा रहा, आपको पता है? मेरी आवाज आ रही है?
हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है।
मैं कह रहा था कि अक्षर पटेल के ना लास्ट 3-4 मैचेस बड़े ही कोई वैशी किस्म के चले गए, उसमें सही स्कोर शकोर खाया है उसने। अच्छा, ऐसी कोई खबर मुझे नजर नहीं आ रही। मैंने देखा है नेट पे कि शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की, तो मेरे ख्याल में ये वैसी बातें हो रही हैं अभी। अगर ऐसा होता तो ट्विटर पे भी हैशटैग वायरल हो जाता।
बिल्कुल मैच तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, ऐसा मैच नहीं होगा तो मैच इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे। बिल्कुल सर बात आपकी ठीक है। विशी साहब कह रहे हैं भाई आई थिंक दिस वाज द बेस्ट मैच इन द हिस्ट्री विच इज़ व्यूड बाय सो मेनी पीपल साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सर,
बिल्कुल
आप अगर आप इंडिया से हैं तो आपको तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। पाकिस्तान पाकिस्तानियों के ज़रा थोड़े से जज्बात एंड में ख़राब हो गए, लेकिन ऑब्वियसली मैच
अच्छा,
तो वन
इस
ऑफ द
पे
बेस्ट।
इनकी जलाल वो मैं देख रहा था कि शेन वॉर्न का लास्ट मैच था, जो मतलब कि मेलबर्न का ना बड़ा अच्छा मैच माना जाता था, जिसपे लोग थे ऑलमोस्ट 90,000, सही है, जिसमें उन्होंने 700 विकेट ली थी।
हाँ
और उससे पहले वाला मैच था जिसपे ऑलमोस्ट उसमें भी इतनी पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट, वो जो मैंने बताया मिचेल स्टार्क वाला था। तो ये जो लेटेस्ट हुआ है कल का, इसमें मतलब के सबसे ज्यादा लोग आए देखने के लिए, और इसकी आवाजें भी आसपास के सबर्ब्स वगैरह जो है वहां तक
हाँ
गई हैं जब इंडिया जीता है,
यार
ऐसे
आई
में जब
थिंक
वहां
जो
तक
92 का वर्ल्ड कप फाइनल था ना उसमें भी काफी आवाम थी, आई थिंक सो।
85
हाँ इसके करीब करीब ही थी, तो वो भी बहुत बड़ा था जो पाकिस्तान जीता था। राजेश कुमार साहब के कहते हैं फिर हॉटस्टार पर 1.7 करोड़ कैसे रहेंगे पाकिस्तान इंडिया। हाँ बिल्कुल सही बात है यार, आई बॉल्स तो पाकिस्तान के रेवेन्यू, यही इसी वजह से जो हम वो कंट्रोवर्सी हो रही थी कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, वो इसी वजह से हम कर रहे थे कि ये सिर्फ फाइनेंशियल इशू पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, ये ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी सब के लिए इशू होगा। लेकिन उमेर साहब ये हमने बात कर ली, इंडिया को मैसिव एडवांटेज मिल गया है कि अप फ्रंट एक लूजिंग पोजीशन से वो एक बहुत बड़ा प्रेशर वाला मैच जीत गए जो लास्ट वर्ल्ड कप में वो नहीं कर सके। अब इंडिया के पास एडवांटेज आ गया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का। पाकिस्तान के पास थोड़ी सी सिचुएशन टाइट हो गई है कि साउथ अफ्रीका को अब हमें मोस्ट प्रोबेबली हराना ही है टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड, ठीक है ना। उस अगर वो नहीं करते तो उसके बाद हम अपसेट भी हो सकता है ऑब्वियसली, और बारिश भी आ सकती है, तो आपको अब ऑलमोस्ट सारे मैचेस जीतने हैं, सही है।
ऐसे ही
अब इसी सिचुएशन में अगर आप ग्रुप दूसरे ग्रुप की बात करते हो तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हमने मैच किया था और उसमें
अच्छा,
अभी भी मुझे
बिल्कुल
याद
जरा
है
इस पे मैं आपको बताता हूँ।
वुडू
हाँ हाँ
पाक जो
बोले,
हमारे इधर भाई हैं और एक और थे कौन
वो मेरे वो
थे,
थे अच्छा।
राबी भाई थे, राबी भाई थे, राबी भाई और वुडू भाई ने कहा था कि भाई न्यूजीलैंड मैच जीतेगा, बाकी हम सारे कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा। 11 साल हो गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया में आके नहीं हराया किसी भी फॉर्मेट में। यार जिस तरीके का
बल्कि
स्टार्ट
जलाल
लिया है भाई।
स्टार्ट से पहले, बल्कि उनके अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो उसपे भी हमारी बात हो रही थी ना, कि उसपे मैं कह रहा था कि यार नहीं, ये लोग 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, एक स्पिनर रखेंगे जो इनका ट्रेडिशन है। तो वहां पे आप कह रहे थे कि नहीं, इनको ये जो आपका जो फर्गसन और मिलर में से एक खिलाना चाहिए और 2 स्पिनर रखने चाहिए, तो
हाँ
वो वाली चीज हमें इनकी टीम में रिफ्लेक्ट हुई। तो मैं जब तो जब मैंने प्लेइंग 11 देखी, मैंने कहा हाँ यार, ये जिल्ले साहब वाली प्लेइंग 11 आ गई है यहाँ पे
नहीं, मुझे लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज़ थी कि इन्होंने ब्रेसवेल को नहीं खिलाया, वो
यार।
मेरे
हाँ
थोड़ा
ये
सा सरप्राइजिंग
वैसे
थी। लेकिन यार क्या फिन एलन ने स्टार्ट किया, उसने तो दूसरी गेंद पे मिचेल साहब को चौका, तीसरी गेंद पे छक्का, इतना बड़ा ग्राउंड और मतलब
बिल्कुल
पावर
यार,
प्ले में ही हरा दिया था उन्होंने तो।
बहुत बेहतरीन, मतलब बड़ा अच्छा स्टार्ट किया फिन एलन ने, और मतलब शुरू से डोमिनेट किया। इवन मिचेल स्टार्क जब पहला ओवर उसने कराया ना, तो फिन एलन ना अपनी पिच पे भी फ्रंट फुट, मतलब ना थोड़े अपने फुट से भी स्टेप वगैरह चेंज कर रहा था, आगे पीछे
बिल्कुल
हो रहा था, ताकि बॉलर को ना कॉन्फिडेंस लूज हो। और उसने बहुत अच्छे तरीके से यार एग्जीक्यूट किया जो रोल उसको दिया गया था टीम के लिए, जिस वजह से आप جس وجہ سے گپٹل کو باہر رکھا ہوا تھا اور فن ایلن کو لے کے آئے اور رکھا سب چیزیں, میرے خیال میں پروپر ایک پلان ایگزیکیوٹ ہوا نیوزی لینڈ کا اور بڑی ایک اچھی سکسیس ملی ان کو.
یار دیکھو یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ ہیزل وڈ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹی ٹوینٹیز میں بڑے افیکٹو ہیں, اور افیکٹو کیوں ہیں کہ وہ بیک آف لینتھ بال کرتے ہیں, لائن آف لینتھ بڑی زبردست ہے اور وہاں سے گیند ہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, کائنڈ آف لائک میگرا ٹائپ. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ ڈاؤن دا ٹریک آئے اور انہوں نے ان کی لائن آف لینتھ خراب کی, صحیح ہے, اور ان کے پاس فال بیک نظر نہیں آ رہا تھا. آسٹریلیا واز پینکنگ, مطلب اگر فن ایلن ایک دو اوور اور کھڑے رہ جاتے تو کام اور زیادہ خراب ہو جاتا. ہم یہ بات کر رہے تھے جب ٹرائی سیریز ہو رہی تھی پاکستان بنگلہ دیش نیوزی لینڈ کی, کہ اور نیوزی لینڈ لگ رہا ہے بہت زیادہ اوور ریلائی کر رہا ہے فن ایلن پہ, ایک نیا لڑکا ہے شاید وہ بہت پریشر میں نہ آ جائے, لیکن لگا نہیں ہے بھائی جس انداز میں وہ بندہ کھیلا ہے, مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ یار, آؤٹ اسٹینڈنگ, جتنی تعریف کرے کم ہے.
بہت فٹ یار, مطلب کہ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا شروع کے تین چار اووروں میں. اور یار یہ جلال میں یہ بولوں گا کہ فن ایلن کا ساتھ بھی بڑا اچھا دیا کون,
بالکل بالکل کونوے نے.
اب دیکھیں یہی چیز جلال ہم لوگ اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں بات کرتے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے بھی بلکہ بات کی تھی کہ جو ان کا جو ٹیمپلیٹ ہے صحیح ہے, ان کے پلیئرز کا بھی پاکستان کے پلیئرز کی طرح تھوڑا حال ہے. اب پاکستان بھی اس والے ایٹیٹیوڈ پہ جا سکتا ہے اگر فخر زمان ٹاپ پہ آ جائے, ساتھ رضوان آ جائے, پھر بابر آ جائے, ہے نا,
ٹو لیٹ بھائی, ٹو لیٹ. لیکن آپ کو کب یاد ہے کہ فخر زمان نے اس طرح کی ہٹنگ کی ہو؟ لاسٹ جو مجھے یاد ہے پاکستان میں, صرف جو میں نے دیکھا ہے شرجیل خان کو ایسی ہٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی نے اس طرح کی ہٹنگ کی ہے.
ہاں فخر زمان, مجھے تو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے.
تین اووروں میں بھائی اس نے میچ ہی ختم کر دیا تھا آلموسٹ, تین اووروں میں. پاکستان میں کوئی ایسا ہٹر نہیں ہے اوپننگ میں, خاص طور پہ فخر زمان کو بھی بشک لے آؤ, کہ آپ نے تین اووروں میں آلموسٹ 50 کے قریب رن کر لی ہوں ٹی ٹوینٹی میں. یہ مطلب لاسٹ اگر کلین اسٹرائکنگ دیکھیں تو شرجیل خان کی یاد آتی ہے, اور اس سے پہلے چلے جاؤ تو پھر وہی والی بات ہے, آپ عمران نذیر کے دور میں چلے جاؤ. ہاں وہی آپ کو نظر آتا ہے, اس کے علاوہ تو نظر نہیں آتا. کونوے ہم کرٹیسائز کر رہے تھے تھوڑا ٹرائی سیریز میں کہ اسٹرائک ریٹ کا شاید ایشو ہو سکتا ہے کونوے اور ولیمسن کا جب دونوں آتے ہیں, لیکن کونوے نے میچ اپس کے حساب سے, کیونکہ سینٹنر بھی اندر بال لاتے ہیں اور کیا نام ہے آپ کے جو اش سودی ہیں وہ بھی موسٹلی لیگ اسپنر ہیں تو اندر بال لاتے ہیں, تو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور بڑا اچھا کھیلا. ولیمسن پھر تھوڑے اسٹرگل کر رہے تھے میچ اسٹرائک ریٹ اسپیکٹ سے, لیکن ہاں لیکن بڑا زبردست مطلب فنش بھی کیا آگے, جمی نیشم نے بھی بڑا زبردست فنش کیا. کیا کہتے ہو کہ اوور آل اننگس کے بارے میں؟
یار اوور آل اننگ نیوزی لینڈ کی بیٹنگ بہت اچھی تھی, پہلے 10 اووروں میں 100, آخری 10 اووروں میں 100, میرے خیال میں آئیڈیل سینیریو ہے, اس سے بہتر سینیریو تو ہو نہیں سکتا. اس میں یہ کہ ولیمسن کی بات کی, ولیمسن کا جلال مجھے فارم کا تو مطلب کہ ان کی ٹیکنیک پہ تو مجھے ڈاؤٹ نہیں لگ رہا, جو انہوں نے شارٹس کھیلی ہیں وہ گراؤنڈ میں شارٹس تو بہترین ہیں. شاید ان کا لک فیکٹر کی بات کر سکتے ہیں یہاں پہ, وہ والا ان کا تھوڑا ڈاؤنر چل رہا ہے. باقی اس کے بعد جب نیشم آتا ہے تو نیشم نے یار وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ اتنا لائم لائٹ پہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے پچھلے ورلڈ کپ میں بھی انگلینڈ والا میچ ہوا تھا, انگلینڈ ورسز نیوزی لینڈ, اس میں بھی وہی بندہ تھا جس نے آخر میں آ کے نا امپیکٹ ڈال دیا تھا, لیکن وہ اس طرح لائم لائٹ پہ نہیں آتا. اس نے بھی اچھا کھیلا لیکن میرے خیال میں آخری تین چار اووروں میں چھکے کم لگے, لیکن جو انہوں نے رننگ کی ہے نا بٹوین دا وکٹس نیشم اور کونوے نے, وہ یار بہت آؤٹ اسٹینڈنگ, مطلب کہ جہاں دو بننے تھے تین بن رہے تھے وہاں پہ, اور حالت بھی بہت زیادہ ٹائٹ ہو گئی تھی نیشم کی بھاگ بھاگ کے. تو میرے خیال میں جو رننگ بٹوین دا وکٹ صحیح ہے, اور جو مطلب پلیئرز کھیلے بڑا صحیح کھیلے ہیں. میں اس پہ
نہیں بالکل, جیمی نیشم یار آپ کی آپ نے صحیح بولا ہے, آئی پی ایل میں بھی بےچارا کھیلتا ہے تو بینچ پہ ہی بیٹھا رہتا ہے زیادہ تر, اور اس طریقے سے لائم لائٹ میں نہیں آتا. حالانکہ 2019 کا ورلڈ کپ بھی اگر آپ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا دیکھو تو مطلب ہی واز آؤٹ اسٹینڈنگ یار, مطلب کلین اسٹرائکنگ کرتا ہے اور ہمیشہ امپیکٹ ڈالتا ہے, بالنگ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو نیوزی لینڈ نے تو بہت زبردست کھیلا ہے. اچھا اب آسٹریلیا پہ اگر بات کریں, بالنگ تو آسٹریلیا کی تھوڑی اسٹرگل کر رہی تھی, بیٹنگ میں وارنر کا وکٹ آبویسلی ایسے میچ میں 200 سپر چیز کر رہے ہو اور وارنر جلدی آؤٹ ہو جائیں تو بڑا ڈینٹ پڑ جاتا ہے, لیکن تھوڑا انلکی آؤٹ ہوئے, بال ڈریگ آن کر گئی ان کے سٹمپس کے اوپر, ان کا بلا وغیرہ لگ گیا, انلکی آؤٹ ہوئے. لیکن عمیر تعریف کرنی ہوگی ایکسپیرینس کنڈیشنز اور گراؤنڈ ڈائمنشنز کو جس طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے اسپنرز نے بھی, اور پھر ٹیم سعودی نے سٹیپ اپ کیا, مطلب تین اوور اور دو اووروں میں پتہ نہیں تین وکٹیں لی ہیں, دو کی اکانومی سم تھنگ,
دو میں 6 اور 3 وکٹیں لی ہیں, بالکل.
مطلب ہے کہ ہم نیوزی لینڈ کو عمیر کہہ رہے تھے, میں کہہ رہا تھا, آپ نہیں کہہ رہے تھے, ٹرائی سیریز میں دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا سیمی فائنل والی ٹیم نہیں لگ رہی بھائی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ شاید فرگوسن بھی نہیں تھے ٹیم میں اور اسپننگ کمبینیشن بھی اس طرح والا نہیں بنا تھا, اور اس سودی بھی تھوڑا اسٹرگل کر رہے تھے, और विलियमसन और कॉनवे की स्ट्राइक रेट का भी इशू चल रहा था, लेकिन अब देखो तो भाई ये तो जिस मार्जिन से हराया है उमेर, मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए काम खराब है।
मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और बल्कि ऑस्ट्रेलिया को अभी अच्छे मार्जिन से जीतने पड़ेंगे सारे मैचेस। अगर वहां पे न्यूजीलैंड हार जाती है श्रीलंका से या कुछ इस तरह का आ जाता है, फिर तो रन रेट पे बात आ जाएगी, और मेरे ख्याल में अगर रन रेट पे बात आएगी तो फिर ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बैड सीन लग रहा है। और जलाल, आपने अभी न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात की, उसमें जो ट्रेंट बोल्ट का पहला ओवर था यार बहुत ही कमाल का, मतलब कि उसमें भी कैच छुटा, खैर वो कैच थोड़ा मुश्किल था, उसको उस तरह नहीं कह सकते, ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन यार बहुत अच्छा ओवर कराया था पहला, मतलब मैं तो वैसी बॉल्ट मुझे पसंद है, लेकिन बड़ी अच्छी बॉल कराई थी इसने।
नहीं, उनको पता है यार इस कंडीशन में, अब तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। टीम साउदी हमेशा मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि टीम साउदी को मार पड़ जाएगी, क्योंकि उनकी पेस उस तरह की है, खासतौर पे एंड पे तो मुझे बहुत डर लगता है टीम सऊदी को मार पड़ेगी, लेकिन यार जिस तरीके से उन्होंने स्टेप अप किया है। राजेश कुमार साहब कहते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया का जो है ना अब चांस नहीं है, बड़ा मुश्किल हो गया। अब उनका जो मैच है उमेर अगला श्रीलंका के साथ कल ही है आई थिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और श्रीलंका जिस हिसाब से खेल रहा है ना अब वही एशिया कप वाला उस्ताद नजर आ रहा है। हमने बात की कि अफगानिस्तान से हारे एशिया कप में, इधर से नामीबिया से हार गए, और अब जो लग रहा है ये जो लास्ट वाला मैच इन्होंने खेला आयरलैंड के खिलाफ, निसंका भी नहीं थे और इंजरी स्ट्रगल देखो कितनी ज्यादा है, बॉलर चले गए मेन, सही है, बैटर्स दो चले गए, गुनत थिलेका भी इंजर्ड हो गया, तो यार उस्ताद बॉलिंग में भी लग रहा है, स्पिनर्स में खास तौर पे विकेट टेकिंग, फील्डिंग भी ठीक ठाक है, और बैटिंग डेप्थ तो श्रीलंका की नजर आ रही है। डेंजरस टीम है भाई, डेंजरस टीम, क्या कहते हो
यार? अगर एशिया कप वाली परफॉर्मेंस को सामने रखूं फिर तो मुझे लगता है कि यार श्रीलंका एक टफ टाइम काफी कर सकती है, लेकिन यार वही बात है जलाल, मेरा अभी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है श्रीलंका टीम में, मुझे लगता है कि शायद ये स्ट्रगल कर ले, मतलब क्वालिफाई करने में
स्ट्रगल तो कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है ये डेंट भी मार सकती है। ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका का रिकॉर्ड भी अच्छा है, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलती भी बड़ा जबरदस्त है हिस्टोरिकली अगर आप देखो ना, और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा स्ट्रगल भी करता है मिस्ट्री स्पिन के आगे, तो ये इनके पास स्पिनर्स इस तरह के हैं जो आउट कर सकते हैं। खैर एनीवेज देखते हैं क्या होता है। इस मैच में अगर श्रीलंका की मैच की बात करूं ना यार, आयरलैंड की हमने फील्डिंग की बड़ी तारीफ की थी मैं, इस मैच में तो बड़ी पथेटिक फील्डिंग थी
यार, बाकी इस मैच में थोड़ा
आयरलैंड बेचारे लग रहे थे कि बस इतना काफी है कि हम क्वालिफाई कर गए।
हमने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी थी
उस्ताद एनजी भाई ने क्या याद कराया, सुपरमैन कैच ग्लेन फिलिप्स का रनिंग कैच आ रहे थे, और जो इन्होंने फ्लाइंग कैच किया, एक इस तरह का कैच वैसे मोहम्मद रिजवान ने पकड़ा था शुरू में अपने जब कैरियर में जब आए थे, ऊपर कैच था और वो बिल्कुल उन्होंने डाइव मारा था, लेकिन शायद अभी तक तो टूर्नामेंट का बेस्ट कैच यही है भाई ग्लेन फिलिप्स का, इवन दो इंग्लैंड वाले मैच में भी बड़े अच्छे कैचेस हुए। राबी साहब क्या कहते हैं भाई, राबी साहब आ गए हैं, देखे लेट आए हैं आज राबी साहब, राबी साहब आपकी प्रेडिक्शन ठीक होगी, वालेकुम अस्सलाम, आपने कहा था न्यूजीलैंड जीतेगा।
अच्छा ये नीचे कह भी रहे हैं कि लुक ब्रो जलाल न्यूजीलैंड वेल प्लेड, क्या बात है,
बिल्कुल सर, क्या कहने आपके यार, क्या कहने, मुझे तो लग रहा था कि आपकी प्रेडिक्शन जो है आप पे भारी पड़ जाएगी, लेकिन आप देखें आप हमसे बड़े एक्सपर्ट निकले हैं, देखें क्या बात है, हम तो फैंस हैं सर, एक्सपर्ट तो वैसे भी हम हैं नहीं। KL राहुल एक कैच लिया सिक्स वाला कैसा था, आउट नहीं हुआ सिक्स हो गया यार, हाँ क्लोज था। अच्छा आसिफ का भी कैच वैसे वो जो था एंड वाला जो छक्का पड़ा है उमेर, वो भी रुक सकता था वैसे, वो ज्यादा इजी था इस वाले से, वैसे
बस वो आसिफ थे वो स्काई है, बड़ा फर्क है
यानी KL राहुल। अच्छा इंडिया को, अच्छा अभी इंडिया की बात की, खैर ये बात अच्छी कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक रेलेवेंट है तो अभी से बात कहते हैं। गौरव चौधरी कहते हैं श्रीलंका का रिकॉर्ड अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सर मैं भी यही कह रहा हूँ, और हिस्टोरिकली बड़ा अच्छा खेलते हैं, और इस टीम में यार वो एक नज़र आ रही है हंगर नज़र आ रही है, जिसे कहते हैं ना श्रीलंका की टीम के, हमने प्रूफ करना है, खासतौर पर जो उनकी कंट्री में जो सिचुएशन हुई है उसके बाद मुझे लग रहा है कि दे आर अप फॉर इट, मतलब
यार मैच डालेंगे। इनका मुझे कैप्टन बहुत अच्छा लगता है यार,
हाँ कूल है बंदा
वो, मतलब ना कूल भी है और मतलब ना बड़ा डिसेंट सा, एक अच्छे डिसीजंस, कुछ उस तरह अजीब सी हरकतें नहीं इसकी
अजीब सी हरकतें नहीं,
मतलब कि इस तरह ना कि स्ट्रेटजी वाइज कोई उस तरह की हरकतें नहीं कर लेता क्या बंदा बोले ये क्या कर रहा है. कि जिस तरह आपको याद होगा एशिया कप का फाइनल हुआ था उसमें भी हालांकि मधुशंका एक्सपेंसिव रह गए थे लेकिन फिर बाद में इसने सही तरीके से उसको यूटिलाइज किया तो वो बड़ी अच्छी चीजें थी.
नहीं जितनी इंजरी सेटबैक मिले हैं उसके बावजूद आप फाइट दे रहे हो तो बड़ी बात है. और हम तो बल्कि कह रहे थे शायद क्वालिफाई ना कर सके जो हालात हो गए थे नामीबिया के बाद, लेकिन स्टेप अप किया है. ऑस्ट्रेलिया की सर बैटिंग स्ट्रगल की है, क्या ख्याल है? वार्नर आउट हुए हैं, फिर उसके बाद फिंच की स्ट्राइक है कुछ अच्छी, बड़ा लंबा छक्का मारा है. मिचेल मार्श का एक कवर के ऊपर छक्का, मतलब जबरदस्त छक्का यार, कवर के ऊपर उमैर छक्का मारा है बंदे ने, और 15 रोज बैक, मतलब है कि क्या बात है. लेकिन वही बात है ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है उमैर, चल गई तो 250 भी कर देंगे, ना चली तो 100 पे भी ढेर हो जाएंगे, ये वो वाला हिसाब है.
एक और चीज जलाल मुझे लगी कि देखे ऑस्ट्रेलिया इसी इंटेंट के साथ आया है कि हमने 200 ही चेस करना है. मतलब कि ये एक जैसा पाकिस्तान, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी और कि इन्होंने ये नहीं देखा कि यार हमारी विकेटें वगैरह गिर रही हैं, इन्होंने मतलब चलते रहे एग्रेसिव एटीट्यूड.
बिल्कुल,
जिस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ग्लेसन, अच्छा इसने यहाँ पे कम बैक मार लिया मैक्सवेल ने, 28 मार दिए 20 बॉलों पे 140 की स्ट्राइक रेट से. ये काफी स्ट्रगल कर रहे थे ना पिछले मैचेस में.
अच्छा अभी दिबाकर चौधरी ने बड़ी अच्छी बात की है, कह रहे हैं जलाल भाई मैच से पहले पाकिस्तान न्यूज चैनल बोल रहे थे शाहीन है, अब बोल रहे हैं वो फिट नहीं था. यार हम भी जब स्ट्रीम कर रहे थे ना दिबाकर भाई, तो जो वार्म अप मैच हैं उसके शुरू वाले ओवर्स तो शाहीन के बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, लेकिन हम मैं उमैर से कॉन्स्टेंटली पूछ रहा था कि यार ये स्पीडोमीटर नहीं शो हो रहा, क्योंकि वो वार्म अप मैचेस में स्पीड नहीं शो हो रही थी. तो मैं और उमैर डिस्कस कर रहे थे यार अब ये देखना पड़ेगा कि ये शाहीन कितनी स्पीड पे बॉलिंग कर रहा है. तो वो किसी को पता नहीं था उस टाइम के ऊपर कि शाहीन एग्जैक्ट किस पेस पर बॉल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वार्म अप मैच में आपने देखा होगा कैमरा एंगल थोड़ा सा फर्क था, मतलब नॉर्मली इंटरनेशनल मैच में पीछे से होता है, उसमें ऊपर से था तो बॉल तेज लग रही थी. उस टाइम पे लग रहा था शाहीन काफी लीथल है, लेकिन जब हमने मैच में देखा है तो वहां पे 135-134 इस तरह की पेस शाहीन की, तो ऑब्वियसली मतलब उस तरीके से उसकी फिटनेस तो नहीं कह सकते, मैच प्रैक्टिस नहीं है, रिदम में नहीं लग रहे वो, ये बात तो है. इस वजह से मेरा ख्याल है मीडिया ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा था.
लेकिन ये खेलते रहेंगे आगे मैचेस मेरे ख्याल में, इनको इस तरह सीन ऑफ नहीं.
हाँ लेकिन मोहम्मद वसीम को खिला लें यार बैकअप के लिए.
ये तो भाई आप आसिफ को मनाए कि वो जाए.
गौरव चौधरी कहते हैं श्रीलंकन टैलेंटेड है बस कभी अप कभी डाउन है. बिल्कुल सर, ये पाकिस्तान हो गया. लेकिन यार उमेर एक और बात मैं आपको बताऊं बड़ी जबरदस्त, आपको पता है T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है?
T20 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑस्ट्रेलिया होगी यार.
श्रीलंका है, सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है. तो अब हम ये उनको, क्योंकि वो कभी कभार क्वालिफाइंग राउंड भी खेल देते हैं तो मैचेस भी ज्यादा खेलते हैं ये अलग बात है, लेकिन अगर आप उनकी देखो ना कंसिस्टेंसी वर्ल्ड कप्स में तो T20 वर्ल्ड कप्स में तो बड़ी जबरदस्त रही है यार उनकी.
ये फाइनल तो सिर्फ हमारे साथ खेला इन्होंने और कौन?
नहीं नहीं यार इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल हराया नहीं था, इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल भी हरा चुके हैं, तो श्रीलंका तो जीता हुआ है ना. अच्छा राबी साहब क्या कहते हैं इंडिया? अब राबी साहब देखो डर लगता है राबी साहब जब प्रेडिक्शन दे देते हैं.
राबी साहब की फिर हैवी प्रेडिक्शन आ रही है,
कहते हैं इंडिया विल प्ले सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, व्हाट डू यू थिंक सर? अभी देखो इन्होंने ये नहीं बोला, लेवल कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करो, इन्होंने ये नहीं बोला कि इंडिया क्वालिफाई करेगा, इन्होंने बोला है इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच पड़ना है सेमीफाइनल में. चेक करो उस्ताद ये भाई के एनालिसिस का लेवल चेक करो. राबी साहब आप जो है ना आप बहुत जबरदस्त हैं, आपकी जितनी तारीफ करे कम है. ये अगर मैच हो गया ना तो बड़ा टफ मैच होगा मुझे लगता है, और हिस्टोरिकली न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट बड़ा अच्छा है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है उनको, तो 50-50 होगा सर, बिल्कुल 50-50 होगा अगर ये हो गया तो. और अगर ये हो गया ना राबी साहब तो आपको कोई गिफ्ट भिजवाना पड़ेगा, मुझे ऐसे लग रहा है आपकी प्रिडिक्शन जो है ना बड़ी नेक्स्ट लेवल चल रही है.
ऐसे ही है.
SS98 कहते हैं शेन वॉन यूज टू रेट हार्दिक वेरी हाईली, इंक्लूडेड हिम इन हिज टॉप 3 फेवरेट क्रिकेटर ड्यूरिंग द 2020 टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. वेल हार्दिक डिलीवर्ड हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, परफेक्ट ट्रिब्यूट टू द लेजेंड. बिल्कुल सर, बिल्कुल, और उमेर साहब ने एक पॉइंटर ये भी लिखा हुआ था, मुझे कह रहे थे आप बताएं, मैं बेन स्टोक्स को काफी ऊपर रेट करता हूँ, तो उमेर साहब कह रहे थे आप बताएं हार्दिक पांड्या वर्सेस बेन स्टोक्स हु इज द बेस्ट ऑलराउंडर।
यार हार्दिक पांड्या जिस तरह वो फॉर्म में आया हुआ है, फिट है हार्दिक पांड्या।
यार हार्दिक पांड्या बिल्कुल, लेकिन वही वाली बात है कि बेन स्टोक्स टेस्ट मैच में भी एक्सेप्शनल उसकी परफॉर्मेंस है, हार्दिक पांड्या की भी थी, लेकिन वो इंजरी के बायस अब वो टेस्ट मैच खेल नहीं सके। तो अगर आप ओवरऑल बात करो तो आई स्टिल से बेन स्टोक्स से स्लाइटली अहेड, बट अगर आप सिर्फ लिमिटेड ओवर्स की बात करो तो ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या व्हेन ही इज बॉलिंग एंड बैटिंग ऑब्वियसली ऑलराउंड जब खेल रहे हैं। अदरवाइज देखो बेन स्टोक्स एज अ बैटर ना हार्दिक से मुझे उस तरीके से बेहतर लगता है, क्योंकि वो अडॉप्ट कर सकता है डिफरेंट गेम।
हार्दिक पांड्या ने अभी जो रीसेंट इसकी फॉर्म आई है, मतलब जो रीसेंट ये खेला है इंजरी के बाद, उसके बाद से तो बहुत आउट क्लास खेल रहा है
यार, स्पेशली कंसीडरिंग जो लास्ट वर्ल्ड कप में इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद आईपीएल जीतना एज अ कैप्टन जीतना नई टीम के साथ, क्या बात है यार, क्या बात है। एक और प्रेडिक्शन आई है,
क्या कह रहे हैं जी रावी,
एक और प्रेडिक्शन आई है रावी भाई की।
अच्छा, पाकिस्तान इंडिया दोनों सेमीफाइनल में है यार,
पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा है उस्ताद, अब ये गिफ्ट एक बनता है, अगर ये दोनों चीजें हो गई ना रावी भाई को गिफ्ट कोई बनता है भाई, जा रहा है रावी भाई। रावी भाई एड्रेस वेड्रेस आपसे लेंगे या आपने जो दे दिए ना बाकी सारे भी बताएं भाई, आपकी सेमीफाइनल टीम वाली कौन सी है जरा कमेंट करके बताएं ना। रावी भाई ने गेम स्टार्ट कर दिए। दिवाकर चौधरी भाई कहते हैं जलाल भाई आपको हैप्पी दिवाली, बिल्कुल सर आप लोगों को भी बहुत ज्यादा हैप्पी दिवाली जो भी देख रहे हैं, खास तौर पे जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज्यादा हैप्पी दिवाली। उड़पा कहते हैं मुझे लग रहा था कि सॉल्ट भाई की भूत विराट कोहली में आ गए हैं। अच्छा
भाई की ये क्या मतलब,
सॉल्ट भाई नहीं वो वाला, ये वाला जो वो नमक छोड़ता है रेस्टोरेंट, हीरा भरवाद आई डोंट नो कि क्या है असल नाम आपका। हाय फ्रेंड्स, हाय आपको भी हाय। अच्छा गौरव चौधरी साहब कह रहे हैं, अच्छा अगर आपका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो यार उसके लिए माजद, मुझे सही पता नहीं चला हीरा आगे क्या है उसका। गौरव चौधरी भाई जब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हरा सकता है तो इंडिया भी न्यूजीलैंड को हरा देगा तो पता नहीं, हरा सकता ज़रूर है गौरव भाई, ये बात तो आपकी ठीक है, ठीक है। खास तौर पे अब कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि प्रेशर वाला मैच खत्म हो गया, अब प्रेशर इंडिया से हट गया, काफी हद तक हट गया, अब इंडिया खुल के खेलेगा
आराम से, जीतने दो तीन मैचेस और मेरे ख्याल में यार लेकिन ये टफ होगा वैसे, अगर सेमीफाइनल होता है ना इंडिया और न्यूजीलैंड का तो ये काफी टफ होगा, मतलब इंडिया भी जीत सकता है जलाल साहब वैसे।
नहीं नहीं जीत सकता, क्यों नहीं जीत सकता, मैंने ये नहीं कहा नहीं जीत सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफ मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा है वर्ल्ड कप्स में बहुत ज्यादा ऑफ लेट, तो मैं वही बस कह रहा हूँ। वुडू पाक कहते हैं आपका कैमरा गुस्से से गर्म हो गया है कि लास्ट नवाज को क्यों दिया, बस यार देख लें अभी भी कोई पता नहीं है, फिर से मुझे थोड़ा लग रहा है मसला कैमरे में आज, पता नहीं क्या हो गया वैसे यहाँ पे तो सर्दी ज्यादा है,
कि अगला फोर्थ सीमर खिला दे नहीं तो जलाल साहब का कैमरा और ना
कैमरा जल जुल ना जाए,
गर्म ना हो जाए, जल ही ना जाए।
विराट कोहली फैन है भाई ये और MSD फैन है, 18 विराट कोहली की जर्सी नंबर और 7 MSD की जर्सी नंबर, ठीक है। ANZ भाई भी कह रहे हैं सेम एज राबी, वो कह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया इस ग्रुप से जा रहा है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड उस ग्रुप से जा रहा है। लो भाई
यार वैसे ऐसा हो जाए तो अच्छा है, इंग्लैंड के साथ अगर पाकिस्तान का
पड़ता यार एक मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया का, देखो पूरी दुनिया कह रही थी ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जा ही जा रही है, अब एक मैच के बाद बेचारे बिल्कुल ही काम खराब हो गया उनका। SS98 भाई कह रहे हैं माय प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया विल प्ले पाक इन द सेमीफाइनल एंड इंग्लैंड विल या मैं गलत हो गया, ऑस्ट्रेलिया विल प्ले इंडिया इन द सेमीफाइनल, इंग्लैंड विल प्ले पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल, आई थिंक ये कहना चाह रहे हो आप।
नहीं नहीं कह रहे माय प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया विल प्ले इंडिया एंड पाकिस्तान विल प्ले न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल।
यार ये हो जाए तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल का तो बड़े ब्राइट चांसेस है,
अगर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला ना फिर तो पाकिस्तान बाहर है,
पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं चाहता और इंडिया न्यूजीलैंड के साथ नहीं चाहता। सही है, ये हो जाए तो अच्छा है भाई, ये हो जाए तो दोनों के लिए अच्छा है।
सही बात।
राजेश कुमार कह रहे हैं भाई मेरे को लग रहा है पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में होंगे, भाई ये जो है ना अब मेरे भाई दिल जो है ना दिल अब ये मेरा तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक और मैच वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल,
एक और स्कूल ऑफ थॉट आ रहा है ना, इस पे एक और स्कूल ऑफ थॉट आ रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान हारा था ना इंडिया से पहला मैच और फिर फाइनल जीत गया था, तो कह रहे हैं कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ लाइक दिस। तो देखते हैं ये वाली खबर कहां
से आई। वो 2019 के वर्ल्ड कप में भी लाइक फॉर लाइक ही चल रहा था, जो मैच पाकिस्तान 92 में जीता था जो हारा था उसी तरह चल रहा था। इजहार अहमद साहब कहते हैं सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान के कितने मैच जीतने होंगे? सर सेफ साइड पे रह के सारे ही जीतने पड़ेंगे क्योंकि वेदर का मसला है, किसी मैच में भी मतलब रिजल्ट इधर उधर हो सकता है। तो अब पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया कि ऑलमोस्ट सारे मैच ही जीतने हैं, अदरवाइज अगर एक हार गया या कोई बारिश हो गया तो फिर वही बात है, रन रेट वगैरह का इशू बन सकता है। तो ये बात है। गौरव भाई कहते हैं भाई अभी सेमी बताना मुश्किल है क्योंकि बारिश है, ठीक है अभी सेमी बनाना सही बात है, मुश्किल तो है। वुडू पाक कह रहे हैं श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में, ठीक है उस ग्रुप नहीं, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड तो हो नहीं सकता, श्रीलंका और न्यूजीलैंड आ सकते हैं क्योंकि वो तो सेम ग्रुप में, इसलिए हाथ से बोल रहा हूं अभी तक इनका कोई हारने का चांस नहीं दिख रहा। अच्छा मुझे लगता है कह रहे हैं आप श्रीलंका और न्यूजीलैंड उस ग्रुप से आएंगे, मे बी मुझे भी ऐसे श्रीलंका डेंजरस टीम लग रही है।
नहीं यार मुझे नहीं लगता श्रीलंका उस तरह आएगी।
राबी साहब कह रहे हैं उमेर और जलाल भाई आप बताएं ना सेमीफाइनल कौन जा रहा है?
यार हमारे ग्रुप से तो पाकिस्तान और इंडिया जा रही है, और दूसरे ग्रुप से
जा रही है ऐसे बोलते हो जैसे पता नहीं कोई फ्यूचर देख के आ रहे हो, जा सकती है बोलो यार
जाएगी जाएगी
पॉलिटिकली करेक्ट हो
रही जाएगी। दूसरे ग्रुप से यार देखिए इंग्लैंड ने भी जो अफगानिस्तान के साथ खेला है मैच वो देखा जाए वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं खेला वैसे।
यार उस मैच पे भी बात करनी है अभी, मैंने फील्डिंग पे बात करनी है इंग्लैंड की।
तो वो अभी ये कि न्यूजीलैंड तो जा रहा है ठीक है नजर आ रहा है जाता हुआ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा टाई होगा।
अच्छा अभी आप कह रहे हो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, अच्छा ये बता देते हैं ना मैंने और आपने जब सेमीफाइनल की वर्ल्ड कप से पहले बताई थी वो क्या थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वहां से जा रहा है, ठीक है और आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया यहाँ से जा रहा है, सही है ये हमने शायद बात की थी मेरा ख्याल है।
मेरे ख्याल में पहले हमने ये कहा था
कि इंडिया और साउथ अफ्रीका जा रहे हैं,
साउथ अफ्रीका का कह रहे थे लेकिन फिर हमने कहा था पेट्रियटिज्म को जगाए रखते हैं पाकिस्तान को ले जाते हैं कुछ इस तरह, मतलब पाकिस्तान ही आप समझे।
यार मुश्किल हो गया यार, देखो मुझे अभी भी वैसे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कुछ ना कुछ करेगी कि स्टेप अप करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को जाना चाहिए वहां से, और इंडिया और साउथ अफ्रीका को जाना चाहिए लॉजिकली आई थिंक, क्योंकि मुझे लगता है साउथ अफ्रीका एक बेटर टीम है। अब साउथ अफ्रीका को बारिश अगर मार दे तो एक अलग
नहीं, लेकिन जाएगी कौन सी ये बताया ना
यार। आई एम गोइंग विद अभी भी इंडिया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड
पाकिस्तान, इधर से आप लेके जा रहे हैं इंडिया को और साउथ अफ्रीका से, और दूसरे ग्रुप से किसको लेके जा रहे हैं?
ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड।
अच्छा न्यूजीलैंड को नहीं लेके जा रहे आप?
नहीं क्योंकि मैं स्टिक अराउंड करना चाहता हूँ, जो मैंने पहले कहा था मैं हर मैच के बाद बदलना नहीं चाहता है?
अच्छा नहीं मेरे ख्याल में तो यार न्यूजीलैंड जिस तरह खेला है न्यूजीलैंड तो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में टाई आ सकता है चीज का। बाकी यार जो लोग अभी हमारा चैनल देख रहे हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हम लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाए, और साथ साथ सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें, ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी कर लें और टिकटॉक पे कर लें। और जलाल साहब बता दें पॉडकास्ट वगैरह का?
बिल्कुल सर, हमारी डिस्क्रिप्शन में सारे मौजूद हैं, पॉडकास्ट भी ये वाली एपिसोड ऑडियो में जाएगी, वेबसाइट पे भी होगी हमारी www.talkbeforewicket.com, सारे पिछले एपिसोड्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, गूगल पॉडकास्ट एप्पल स्पॉटिफाई सब पे होंगे। देखें वो नहीं होता जितना वो स्पीड में वो बोलते थे कि वो जब हम छोटे थे ऐड आता था किसी दवाई का कि ये दवाई जो है बच्चों की पहुँच से दूर रखें तब ये ज़्यादा ख़राब आने पर डॉक्टर से रजू करें, वो उसी स्पीड में मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा राजेश कुमार भाई कहते हैं भाई इतना तो पता है कि इंडिया फाइनल खेलेगी। यार ट्रिकी है भाई, ट्रिकी है ये, आपका कॉन्फिडेंस तो है सेमीफाइनल के बाद सर इट्स मतलब वेरी ट्रिकी टू से कि कौन फाइनल खेलेगी, फिर कोई भी टीम आगे जा सकती है। अच्छा इधर एक बात हुई थी, आपने बात की थी उमेर इंग्लैंड की, इंग्लैंड की हमने देखी थी फील्डिंग थोड़ी सी स्ट्रगल करी थी जब वो पाकिस्तान आए, लेकिन भाई अफगानिस्तान वाले मैच में तो अफगानिस्तान की बैटिंग तो डिसअपॉइंटिंग रही, लेकिन यार जो जालिम कैचेस किए हैं उन्होंने यार, मतलब लिविंगस्टन ने और बाकी सब ने जो कैच किए हैं, वो तो लग रहा था बारियां लगाई हुई हैं कैचेस की, खतरनाक।
क्या यार फील्डिंग पे? मैंने वैसे मैच ये वाला देखा नहीं है इंग्लैंड और अफगानिस्तान का, थोड़ा मैंने फॉलो किए इंग्लैंड की बैटिंग को, उस पे मैंने देखा कि अफगानिस्तान फील्डिंग में काफी स्ट्रगल कर रहा था और
अफगानियों ने तो कैच छोड़ने का वो तानी हुई थी ना अफगानी भाइयों ने, अफगान भाइयों ने, मुझे एक पहले अफगान भाई मिले, उन्होंने कहा कि भाई अफगानी नहीं होता अफगान होता है, तो अफगान भाइयों की मुझे लगा कि वो तो कैच ड्रॉप करने पे उन्होंने तुले हुए थे। तो
बाकी फारूकी की बॉल बहुत अच्छी थी, फारूकी की बॉल बहुत अच्छी लगी, राशिद खान तो एज यूजुअल बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है, और एक चीज मुझे लगा कि यार हैरी ब्रूक जो आउट हुआ वो थोड़ा सा मुझे एक लगा कि यार उसको आउट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो जाहिर अभी खेलने
आपका तो बड़ा फेवरेट खिलाड़ी है वो,
तो बड़ा फेवरेट है यार, उस बंदे की क्लास भी है, वो नेक्स्ट केपी नजर आ रहा है मुझे केविन पीटर्स
यार। आप मुझे तो देखो लिविंगस्टन की बहुत वैल्यू नजर आ रही है टीम में, वो बंदा बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग में भी वो इस मैच में भी उसने स्टेप अप किया जहां पे सारे स्ट्रगल कर रहे थे, और फील्डिंग में भी वो स्टेप अप किया, तो एक 3D प्लेयर उनको मिला है और मतलब बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा है। फिर सैम करन का देखो, हमें लग रहा था सिर्फ पाकिस्तानी डिसीव हो रहे हैं, 5 विकेट ले गया अगला, और उसकी पेस की वेरिएशन भी होती है, उसकी लेंथ की वेरिएशन भी होती है, तो वो लड़का इस यंग उम्र में देखो वो बॉलिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी अच्छी करता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है, तो जो इंग्लैंड का बैलेंस है ना यार वो बड़ा जबरदस्त है। ये अलग बात है
यार
कि अफगान बॉलरों ने काफी मतलब ट्रबल क्रिएट कर दी।
राज साहब आप इंग्लैंड के बॉलर्स में मार्क वुड को मेरे ख्याल में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
नहीं 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 अंडर एस्टिमेट कहां कर रहा हूं सर, वो तो
मार्क वुड
थंडरबोल्ट्स करा
वो बंदा ऐसा है ना कि बहुत इंपैक्ट डाल सकता है अपना वर्ल्ड कप में, और वो भी टॉप फेवरेट।
आई थिंक अगर 20-25 रन अफगानिस्तान के ज्यादा होते ना मेरे भाई मैच बन गया था, मैच बन गया था, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी इंग्लैंड वालों को।
वही ना, ये वाली परफॉर्मेंस मैंने जब देखी ना, तो मैं इसीलिए थोड़ा डाउट में आ रहा हूँ कि यार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में क्या किया, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाई लग रहा है कि इनका अभी जो सेमीफाइनलिस्ट जो हम बना रहे थे कि उसमें इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से कौन सी जाएगी।
नहीं नहीं ये बात आपकी ठीक है, मेरा भी मुझे लग रहा है अभी, मुझे पर्सनली लग रहा है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के चांस का अभी इस टाइम के ऊपर, लेकिन मैं अपनी टीम चेंज नहीं करना चाहता ना, अब आपने एक दफा जबान दे दी तो दे दी ठीक है, अब बार बार तो आप चेंज कर नहीं सकते हर मैच के बाद, लेकिन श्रीलंका और न्यूजीलैंड की हिस्ट्री भी है ना यार, देखो वर्ल्ड कप में ये लोग सरप्राइज देते ही देते हैं, मतलब श्रीलंका न्यूजीलैंड पाकिस्तान ये 3 टीमें जो वर्ल्ड कप में हिस्टोरिकली हमेशा अपनी क्या उसे कहते हैं अपने कैलिबर से ज़्यादा परफॉर्मेंस देती हैं। दिबाकर चौधरी कहते हैं जलाल भाई उमेर भाई जितने पाकिस्तान न्यूज़ चैनल हैं सब बोल रहे हैं डेड बॉल था आई थिंक, लेकिन साइमल टॉफर बोल दिया विराट जो किया सब ठीक किया। बिल्कुल सर, डेड बॉल तो कोई नहीं थी, मतलब वो बात तो ठीक है, बात हमारा आर्गुमेंट तो उस पर है ही नहीं, वो जो 3 रन बन गए वो ठीक बने बाय लॉ बने, उसमें तो कोई आर्गुमेंट नहीं, आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि नो बॉल टाइट थी, और नो बॉल स्ट्रेट अवे दे देते तो ज़्यादा अच्छा लगता, कंट्रोवर्सी ना बनती, लेग अंपायर जो एरास्मस भाई थे अगर वो स्ट्रेट अवे अपना हाथ बाहर निकाल देते और नो बॉल दे देते शायद इतनी कंट्रोवर्सी ना होती।
मेरे ख्याल में तो विराट कोहली ने बड़ा अच्छा किया, मतलब एज अ वो मतलब उनका माइंड इतना मतलब आप समझ सकते हैं एक्टिव था कि उन्होंने छक्के के बाद भी ये वाली चीज मतलब उनके माइंड में थी कि बॉल इतनी ऊपर से खेली है।
यार अंपायर तो प्रेशर भी अंपायर पे भी प्रेशर पड़ता है ना यार, 90,000 लोग देख रहे हैं और इंडियन क्राउड भी ज्यादा था, फिर विराट कोहली जैसा प्लेयर आपको कह रहा हो कि नो बॉल है और मैच इतना फंसा हो, तो मतलब ऑप्टिक्स वाइज ना अच्छा नहीं लगा अंपायर का जिस तरीके से नो बॉल दी गई, मैं वो कहता हूँ। बाकी ये होता है यार, मतलब क्रिकेट में चीजें आपके अगेंस्ट जाती हैं, आपके साथ जाती हैं, इस पे रोना नहीं चाहिए, बात सिर्फ ये है कि उस सिचुएशन तक पाकिस्तान को मैच लाना ही नहीं चाहिए था, पाकिस्तान पहले मैच खत्म कर सकता था। बाबर विल मेक द सेम रन, क्या ये बात कर रहे हैं, बाबर विल मेक द सेम रन एज योर एज,
एज की बात कर
ये किसकी एज की बात कर रहे हैं
चलो यार अगर ये किसी की भी कर रहे हैं तो एक ही बात है, हम दोनों की एज तो सेम ही है, तो खैर है जलाल, हम लोग दिल पे नहीं लेंगे ये बात
नहीं मैं 28 का हूँ यार, 28 रन फिर कम है बाबर के, अगर जल्दी बना जाए ना 13-14 पे फिर ठीक है। SS98 कहते हैं इंग्लैंड आर अंडर प्रेशर टू विन द T20 वर्ल्ड कप, दे आर टर्म द बेस्ट T20 साइड बट लुकिंग एट द वे दे चेज अगेंस्ट अफगानिस्तान डोंट बी सरप्राइज दे डोंट गोल्ड। बिल्कुल सर, चेज तो कन्विंसिंग नहीं था, लेकिन यार अफगानिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी है, मतलब दोनों तरीके हैं देखने के। शायद जिन
थोड़ा स्लो भी खेला है इंग्लैंड ना अफगानिस्तान वाला मैच, आखिर में थोड़ा स्लो स्लो लेके गए उस तरह
यार। अगर मैं मुझे लगता है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच होगा ना, या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच होगा, उसमें इंग्लैंड डिफरेंट अंदाज में खेलेगा क्योंकि वो बॉलिंग टाइप भी तो फर्क है ना।
नहीं, क्योंकि इंग्लैंड का हम लोग थ्रू आउट देखते आए ना पहले मैचेस भी, कि इवन उन्होंने 100 चेस करना है या 200 चेस करना है वो लोग एग्रेसिव ही हो जाते हैं। तो इस वाहिद मैच पे ये चीज थोड़ी सी मुझे लगी कि ये लोग थोड़ा सा ना स्लो हो गए थे।
पिच भी थोड़ी थी उस तरह की, वैसे वो मुझे लग रहा है वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। खैर, ANZ कहते हैं ग्रुप टू रिजल्ट्स, इंडिया 5 पाकिस्तान 4। अच्छा, ये मैचेस बता रहे हैं, साउथ अफ्रीका 3rd पे, नेदरलैंड 2 पे, जिम्बाब्वे 1 पे, बांग्लादेश 1 पे। अच्छा, आप नेदरलैंड को ऊपर रख रहे हो, बात तो ठीक है। वैसे जिम्बाब्वे में सिकंदर रजा पे बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस है। बांग्लादेश ठीक टीम है, पता नहीं बांग्लादेश मुझे लगता है ऊपर होगी यार नेदरलैंड और जिम्बाब्वे से।
अच्छा, ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं टीम्स को कि 5th पे इंडिया है, 4th पे पाकिस्तान है।
4th पे नहीं, मतलब वो कह रहे हैं शायद 5-5 शायद मैच जीतेगी, मैच जीतने की बात नंबर की बात कर रहे हैं शायद। राजेश कुमार भाई, मेरे को लग रहा है पाकिस्तान 3 मैच तो आसानी से जीतेगा, टफेस्ट लग रहा है, लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान का अच्छा है, कुछ भी हो सकता है। सर, मुझे तो लगता है अगर मोहम्मद वसीम को डालेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के सॉल्व हो जाएंगे बैलेंस की टर्म्स में, फिर आगे अल्लाह के ऊपर है। पाकिस्तान की टीम हमेशा कुदरत के निज़ाम पर चलती है। ANZ भाई ने भी प्रेडिक्शन दे दी, उमर साहब अब ये हिस्ट्री के पन्नों में लिखा जा चुका है क्योंकि अब हमारी वीडियो
क्या
में
कहते
आ गया।
भी, क्या कह रहे
हैं, इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, सीरियसली सेव दिस, खत्म होगी बात
यार,
खत्म होगी मैं कह रहा हूं,
बहुत जल्दी है
ये लो भाई, ये याद रखेंगे अब हम, ये सेव हो गया।
आप बड़ा खुश हो रहे हैं इंडिया की जीत में
हैं? मैं जीत पे नहीं, मैं
बड़े खुश हो रहे हैं,
मैं प्रिडिक्शन पे खुश हो रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा है कि यार दो भाइयों ने ऐसी दिलेराना प्रिडिक्शन की। मैं डर रहा हूँ असल में प्रिडिक्शन देते हुए, मैंने अपनी देखो प्रिडिक्शन चेंज नहीं की, मैं आपकी तरह जो है ना पल में तोला पल में माशे वाली बात नहीं। आपने एक मैच के बाद देखो सारी हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, आपने टीम ही चेंज कर दी।
हर मैच के बाद नहीं करते ना, अभी देखें वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा आपने देखना होती है और चीजें भी, तो इस वजह से
भाई अब तो जो टीमें फाइनल कर दी थी वो फाइनल कर दी थी, अब उससे बैकआउट तो नहीं कर सकते।
नहीं, बैकआउट तो हम नहीं कर रहे, हम अभी जो फाइनल हुई है टीमें यही है, देखते हैं।
अच्छा, गौरव चौधरी साहब ANZ भाई से पूछ रहे हैं, चलें इसका जवाब आ जाएगा ANZ भाई से। राजेश कुमार कहते हैं भाई कितना मैच होगा एक टीम का, यार हर ग्रुप वाली टीम अपने ग्रुप में हर टीम से एक मैच तो खेलेगी, तो वो उस हिसाब से देख लें कितनी है एक ग्रुप में, कितनी 5 टीमों का ग्रुप है,
5
का है ना ग्रुप, तो 4 मैच खेलेगी हर टीम,
इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, 6
तो नहीं,
बांग्लादेश हो गई, जिम्बाब्वे हो गए, 5 नहीं, आई थिंक 5 है,
हद हो गई यार। अच्छा चलो, जितना भी है मतलब अपने साथ नहीं खेलेगी, बाकी हर टीम के साथ एक एक मैच खेलेगी, उस कैलकुलेशन लगा लें। अच्छा, दिबाकर चौधरी भाई जा रहे हैं, रात
भी जा रहे हैं, मेरे ख्याल में हम भी चलते हैं जलाल साहब, 11:55 हो गया।
बिल्कुल सर,
और क्या कहते हैं अभी हम लोगों ने कब लाइव आना है, वेडनेसडे को लाइव आना है।
हाँ, वेडनेसडे को कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का मैच कब है अगला, पाकिस्तान का अगला मैच कब है,
7th को है पीके टाइम थर्सडे को। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन है, अगर हम थर्सडे को चलें ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि थर्सडे को मैच आ रहा है पाकिस्तान का, और अगर हम फ्राइडे को देखते हैं, फ्राइडे को किसका मैच आ रहा है,
बांग्लादेश और नेदरलैंड वाला मैच भी है, लेकिन बांग्लादेश इतना कन्विंसिंग नहीं रहा यार, जीता तो है लेकिन वही स्ट्रगल्स लग रही है उनकी बैटिंग में खास तौर
पर, मजा नहीं है उनका अभी टीम से। वेस्ट इंडीज होती तो फिर शायद
6 है ना टीम है यार, देखो ना आपने गलत कैलकुलेशन कराई, हर टीम 5 मैच खेलेगी, आयरलैंड भी तो है, आयरलैंड वो दूसरे ग्रुप में है, नहीं हाँ वो दूसरे ग्रुप में है, नेदरलैंड है, नेदरलैंड हमारे ग्रुप में
5 टीमें, अच्छा हाँ 3-6 टीमें, सही है। अब यार अगर हम फिक्सचर में जाते हैं, मुझे खाली ये देखने दें कि फ्राइडे को कौन सा मैच आ रहा है।
पाक कहते हैं, मैं
फ्राइडे
प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि कल
को भी हैवी मैच है भाई, फ्राइडे को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड आ रहा है। पाकिस्तान
पाकिस्तान का कब है, थर्सडे को?
का थर्सडे को आ रहा है 4 बजे, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे।
अच्छा वो
चले इस पे
मैच मैं
डिसाइड
देख
करते
रहा
हैं कि क्या करना है इस पे
हूँ। वुडू
अभी।
पाक कहते हैं, मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि कल ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, श्रीलंका कल 150 से ज्यादा टारगेट
अच्छा
देगा। वोडोपाक भाई क्या हो रहा है, ये बड़ी प्रेडिक्शन है आज तो हमारी, जितनी प्रेडिक्शन आई है ना। SS98 कहते हैं मार्टिन कपिल शुड रिटायर आफ्टर द
लास्ट
वर्ल्ड
टाइम एक
कप।
और प्रिडिक्शन भी दी थी, वो किसने दी थी कि 170 मारेगा टीम इंग्लैंड के मैच की थी, किसकी थी वो कौन दे रहा था प्रिडिक्शन? वन
मुझे नहीं
सिक्सटी
याद।
फोर सेवन वन
हाँ
सेवेंटी
हाँ हाँ
फाइव फोर
कुछ कहा तो
सेवन
था, 170 for 7 इंडिया बनाएगा। हाँ कोई किसी ने कहा था,
अच्छा हाँ वो थी
अब वो छुप
प्रिडिक्शन।
रहा है, जो भी था वो छुप रहा है। मार्टिन गप्टिल के बारे में SS98 कह रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होना चाहिए क्योंकि अब एलन आ गया है। हाँ यार हो तो सकता है वैसे, अब क्योंकि जगह तो नहीं बन रही, बट देखते हैं। मार्टिन गप्टिल की बड़ी सर्विसेज हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। नेदरलैंड माइट डू एन अपसेट ओवर साउथ अफ्रीका एंड विन अगेंस्ट जिम्बाब्वे। हो तो सकता है। ओ
नीदरलैंड माइट डू एन अपसेट ओवर साउथ अफ्रीका एंड विन अगेंस्ट जिम्बाब्वे। यार साउथ
पाकिस्तान
अफ्रीका
की भी
को
अपसेट कर सकती है वैसे नेदरलैंड का, क्योंकि हमने देखी थी पाकिस्तान नेदरलैंड की सीरीज। अब नेदरलैंड के पास ना दो तीन बॉलर बड़े अच्छे आ गए हैं और एक आध बैट्समैन भी आ गया उनका मेन, जो उस सीरीज में नहीं था। फिर भी मैचेस बड़े टाइट हुए थे पाकिस्तान नेदरलैंड के, तो नेदरलैंड पाकिस्तान को भी हरा सकता है, ऐसी बात नहीं है। थर्सडे है पाकिस्तान जिम्बाब्वे।
98 बता रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे थर्सडे को है और इंडिया वर्सेस नीदरलैंड भी थर्सडे को है। तो अच्छा सही है, पहला
अच्छा इंडिया का पहला है, पहले मैच होगा ना फिर पाकिस्तान से।
पहला इंडिया का है, दूसरा पाकिस्तान का है।
अच्छा ये
यार
जो
ये हो
मैच
किधर
अलग अलग ग्राउंड पे हो
रहा
रहे हैं ना, जो सेम डे मैच हो रहे
है?
हैं।
जाहिर है हाँ, जिस तरह ना पाकिस्तान जिम्बाब्वे का पर्थ में हो रहा है और इंडिया और नीदरलैंड का हो रहा है सिडनी में।
पर्थ में ले गए यार
या
हमें,
सिडनी में
साढ़े
मैंने
चार
सुना
घंटे
है
की
बारिश
फ्लाइट है यार पर्थ
वगैरह।
की, MCG मेलबर्न से, बड़ा हम सफर करना पड़ा यार।
अच्छा
राबी साहब कहते हैं, इंडिया प्ले वेल इन इट्स ग्रुप बट इंडिया आउट फ्रॉम सेमीफाइनल, माइंड इट सर।
क्या बात है, क्या बात है। एक और देखिए, एक आ रही है, एक हमारे पास प्रेडिक्शन आ रही है इंडिया जीत जाएगा फाइनल, और एक और आ रही है कि इंडिया आउट हो जाएगा सेमीफाइनल्स।
नहीं तो अभी राबी साहब ने पाकिस्तान और इंडिया को सेमीफाइनल में नहीं बोला था, आप कह रहे हैं कि इंडिया प्ले वेल इन इट्स ग्रुप बट इंडिया आउट फ्रॉम सेमीफाइनल, माइंड इट सर। ये क्या बात हुई राबी साहब,
एक मिनट देख लेते हैं, मैं मैसेज देख लेता
पीछे
हूँ
आपने
अपने
पाकिस्तान
ऊपर।
इंडिया नहीं बोला था?
यार बहुत लंबी चैट है ये। गौरव
ये मैं अभी जाता हूं ना।
चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बारिश और साउथ अफ्रीका दोनों से बच के रहना है।
बिल्कुल सर
यार
मसला हो
सेम
गया।
सिनेरियो साउथ अफ्रीका का भी है।
राबी साहब आपने तो पहले कहा था इंडिया विल प्ले सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, व्हाट डू यू थिंक सर? अब आप कह रहे हैं
नहीं तो
इंडिया नहीं
ये
जाएगा।
कह रहे इंडिया सेमीफाइनल हारेगा, इन्होंने ये लिखा है। आप
अच्छा, मैं गलत पढ़ गया हूँ। अच्छा
राजेश
अच्छा
कुमार कह रहे हैं बोला था भाई। अच्छा, ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल है ये कह रहे हैं राबी साहब को कि बोला था भाई, कुछ जिस तरह कह रहे हैं।
अच्छा 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 चलें सर, मेरा ख्याल है आज कितना हो गया, 1 घंटा 42 मिनट हो गए हैं। ओए होए होए होए, मैं और आपका इंटरनेट
क्या
डिस्कनेक्ट नहीं हुआ और मेरा कैमरा मसला कर गया, देखो आज
बात है, देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट भी
क्या
नजर
बात
आ
है,
रहा है आपको।
क्या बात
लेकिन
है।
ये वाली आप इसको नजर लग जानी है, मेरे ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे तब इश्यू लग जाए दोबारा। तो मेरे ख्याल में ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं वो लोग इस चीज को टॉलरेट करें कुछ ऐसा, तो
नहीं,
कोशिश
इंटरनेट
करते
का
हैं,
ऑडियंस को
कर रहे
ऐसे
हैं।
बताते हैं जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको तो पता ही होगा हमारा अमेरिका इंटरनेट का मसला रहता है, तो हमने बड़े इंटरनेट कनेक्शन भाई चेंज करा चुके हैं, पता नहीं आप लोगों को क्या
बिल्कुल
बताएं, को 5 से 10 तो हम करा ही चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या
भाई,
मसला है कि सही हो नहीं पा रहा। लेकिन अभी लास्ट 2-3 एपिसोड से बेहतर हुआ है, फिर उमेर साहब ने अपना सेटअप वेटअप भी, ऑडियो का हमें कुछ लोग कह रहे थे ऑडियो का उमेर की कम है, तो वो अब उमेर साहब का
बिल्कुल
माइक शाइक भी सीन ऑन हो गया है, तो
आई
उसका
होप
भी
अब आवाज का
बताएं।
थोड़ा सीन बेहतर हो गया हो।
हाँ उमर की आवाज भी बेहतर हो गई होगी,
ठीक हो जाए फिर और स्मूथ हो जाएगा, फिर हमारे जो बाकी पॉडकास्ट वगैरह हमने जो बनानी है जिसमें रिएक्शंस हैं, जिसमें हमारे टॉप 5 सेगमेंट है, उसको भी करना है डिस्कस।
अच्छा एक चीज और है उमर, जो हमें एक व्यूअर ने भी शायद बोला था कि भाई आप अपने पॉडकास्ट पे ना लोगों को इनवाइट
करें,
हाँ इनवाइट करें। अच्छा एएनजी साहब व्लॉग्स का तो अभी पता नहीं, लेकिन एक चीज हम जरूर करेंगे, अभी ये उमर का थोड़ा इंटरनेट सॉर्ट आउट हो जाए ना, तो हम अपनी स्ट्रीम के एंड में जो लास्ट 10-15 मिनट होते हैं ना, उसमें हम सोच रहे हैं कि आप लोगों में से ना किसी एक दो बंदे तीन बंदे को ना इनवाइट किया करें, ताकि आप लोग भी हमारे साथ आ सकें, मतलब जो वीडियो में आ सकें, और हम आपसे भी सवाल करें और आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टली वीडियो पे शेयर कर सकें, क्योंकि जब हम चैनल नहीं था हमारा उमर, तो हमें फ्रस्ट्रेशन ये थी कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो अभी भी देखो कितने अच्छे कमेंट्स करते हैं लोग और कितना वो अच्छा अपना वो एनालिसिस देते हैं, तो इन लोगों को भी शायद वो मौका नहीं मिल पाता जो हमें नहीं मिल पा रहा था। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो ट्विटर पे भी हमें बाद में जब भी अपलोड होगी तो उनके लिए भी ये होगा कि फ्यूचर में हम ये चाह रहे हैं कि इनिशियली तो इसको हम अनपेड एक ऑप्शन रखें। अनपेड में इसलिए पेड और अनपेड की बात कर रहा हूँ क्योंकि बाद में जब लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं,
इसी की बात अनपेड की करें, पेड शेट्स
नहीं नहीं, अनपेड की मैं जैसे क्लैरिटी दे रहा हूँ क्योंकि हमने अभी पेट्रियन के ऊपर उमर ये ऑप्शन दे के रखी हुई है, वो पेड ऑप्शन है, ठीक है। जो लोग पेट्रियन पे हमारे साथ आए वो ये कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी टेक्निकल मसले हैं तो मैंने वहां पे क्लैरिटी दी हुई है कि अभी टेक्निकल मसला है तो ये अप इन द पाइपलाइन है, लेकिन हम पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं क्योंकि जब लोग ज्यादा हो जाएंगे ना उमर, फिर हम ज्यादती हो जाएगी उन लोगों से, फिर ज्यादती हो जाएगी, तो इस जैसे पहले से अपफ्रंट होंगे जो लोग ज्यादा पहले आएंगे,
वो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग फेज से हमारे साथ हैं, जिस तरह अभी जो लोग हैं जिनसे हम रोज कम्युनिकेशन करते हैं, ये फिर भी एक अपर एज होगा,
जाहिर है, जाहिर
हमेशा रहेगा एंड डे तक।
बिल्कुल सर, इनके लिए तो स्पेशल एक्सेस देंगे ना हम, स्पेशल एक्सेस एक सर्कल बनाते हैं। अच्छा एक चीज और है, ये सब
टेलीग्राम का भी करते हैं,
ये बिल्कुल सर, ये सब कुछ पॉसिबल तब होगा जब आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा, क्योंकि हम लिंक जो है जो कॉल में ज्वाइन करने वाला है वो हम पब्लिकली तो शेयर उस तरह हर किसी से नहीं कर सकते, तो वह सारे कॉल करना शुरू कर देंगे या मीटिंग को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। तो आपके डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको आप जाके ज्वाइन करें चैनल को, ताकि पर्सनली हम उन लोगों को अपनी स्ट्रीम में शामिल कर सकें, हम पर्सनल लिंक उनको भेज दिया करेंगे, तो वो ज़रूर चेक कर लें। बाकी उमर मेरा ख्याल है हो गया है, एक दो कमेंट आने वाले हैं ये ले लेते हैं।
इंडिया में राजेश साहब रावी साहब को कह रहे हैं और SS98 कह रहे हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान शुड हैव प्लेड एट पर्थ, पेस बॉलिंग एग्जीबिशन वुड हैव बीन वर्थ द वॉच एंड पुअर शेड्यूल। अच्छा इनका मैच किधर है वैसे यार SS98 का, SS98 मतलब ये पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का कहाँ पे हो रहा है SS98 अगर आप?
हाँ पर्थ की पिच तो हिस्टोरिकली पेस बॉलर्स के लिए बड़ी मशहूर है, अब लोग कहते हैं उतनी तेज नहीं रही वैसे जितनी हिस्टोरिकली थी,
लेकिन ये तब मजा आएगा ना SS98 साहब जब पाकिस्तान के चार सीमर्स होंगे, फिर मजा आएगा हमें।
इंडिया प्ले सेमीफाइनल दे विल लूज आउट, अच्छा ये आप क्लैरिटी दे रहे हैं रबी भाई, ठीक है समझ आ गई थी, उमर ने बता दिया था। नूडपा कहते हैं इंडिया वर्सेस नेदरलैंड के मैच में इंडिया ज़्यादा टारगेट देगा फिर भी नेदरलैंड में जीतेगा, प्रिंगल कामयाब होगा विकेट लेने में। वुडू पाक भाई और ये नेक्स्ट लेवल सीन चल रहा है भाई इन लोगों का। एडिलेड SS98 भाई कह रहे हैं एडिलेड में होगा, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का, मज़ा आया उमर साहब देखें आज
है? नहीं सही बात है, रोज ही मज़ा आता है लेकिन आज कुछ ज़्यादा मज़ा आया, थोड़े आवाज का भी बेहतरी हुई है और थोड़ा बस पाकिस्तान इंडिया का मैच भी था उस पर डिस्कशन थी, पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चले काफियों के, तो अच्छा सीन है, फिट सीन है।
राजेश भाई क्या होगा तो आप मैच कभी नहीं देखेंगे, क्या हो गया कह रहे शायद इंडिया के सेमीफाइनल में मैच हार गया तो आप मैच कभी नहीं देखेंगे, नहीं यार ऐसा नहीं करें, हम भी बचपन में जब छोटे थे हम भी यही कहते थे, पाकिस्तान मिसबाउल हक ने जब वो लैप शॉट मारी थी ना 2007 वाले वर्ल्ड कप में, उसके बाद मैंने अपने साथ तहिया कर लिया था कि मैं आज के बाद क्रिकेट का मैच नहीं देखूंगा, जैसे ही उमर अगली सीरीज पाकिस्तान की आई है मैं पहला बंदा हूंगा जो मैच देख रहा था। तो ये जज्बात हैं सर, ये चेंज
यार जलाल, ये जो आपको वो सेटबैक मिला था ना, जो आपको वो सेटबैक मिला था मिसबा वाला, मुझे सेटबैक मिला था 2011 का सेमीफाइनल, यार यकीन करें मैं इतना ज्यादा खुश था, इतनी ज्यादा मोटिवेशन थी, क्योंकि आपको याद होगा पिछला क्वार्टर फाइनल वेस्ट इंडीज को बड़े मजे से हराया था इन्होंने, तो वो वाला मैच यार मुझे अभी भी याद है कि मैं आखिरी मौके तक ना मैं दुआ कर रहा था यार कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि आपको याद होगा इंडिया ने उस टाइम, हालांकि इंडिया की स्टेट ऑफ द आर्ट उनकी जो बैटिंग लाइनअप थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उनको रोक दिया था काफी, 280 पे आई थिंक 275।
अच्छा वैसे लास्ट नोट, कितनी दफा हमने बोला है कि अब हम अभी जा रहे हैं, अब बातों में बात आ गई, बड़े लोग इस नो बॉल को कंपेयर कर रहे हैं, ये जो विराट कोहली वाली थी जिसपे छक्का पड़ा, कंपेयर कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर का वो जो LBW डिसियन था सईद अजमल की बॉल के ऊपर 2011 में। अब देखो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या कहता है कि क्या ये नो बॉल की जैसे पाकिस्तान मैच हारा है या उस LBW के नॉट आउट होने की वजह से मैच पाकिस्तान हारा। दोनों मैच पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी थी कि जीत सकता था, सचिन तेंदुलकर को 4 या 5 तक कैच ड्रॉप किए पाकिस्तान ने, ठीक है। अब आप एक वो LBW को रोना रोते रो गए भाई, वो LBW आउट हो जाता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता, भाई जो कैचेस थे उनका कौन। इधर भी अगर आप
मेन चीज,
बिल्कुल
मेन चीज कैचेस ही होते हैं मेरे ख्याल में।
हाँ।
क्योंकि कैचेस 4-5 कैचेस छोड़े, फिर 2003 में अब्दुल रजाक ने कैच छोड़ा सचिन का, तो वो भी एक याद आ गई थी, मेमोरीज बैड मेमोरीज में फंसी हुई थी कहीं।
बिल्कुल
तो कैचेस विन मैचेस ऑलवेज यार, LBW वगैरह भी।
अच्छा राजेश भाई ने गुस्सा किया है, गुस्सा उस बात पे किया, कहते हैं मैं मैच इसलिए नहीं देखूंगा कि ये कह रहा है कि इंडिया नेदरलैंड से हार जाएगा। उस पे माइंड करके नहीं यार कोई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान, जो जिन्होंने कमेंट किया है वो शायद किसी राबी भाई की शायद बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि नेदरलैंड हरा सकते हैं किसी भी टीम को, पाकिस्तान को भी हरा सकता है, तो दिल पे नहीं लेना अगर भाई इंडिया को भी कोई अपसेट हो जाता है, दिल पे नहीं लेने का। वुडुपा कहते हैं मुझे लग रहा है कि उमेर भाई ने सिंगापुर का नेट लगा लिया, कोई मसला नहीं कर रहा, देख ले सर क्या बात है।
वैसे वुडू भाई आपको बताया, हम लोगों ने एक स्पेशल एक IP लिया है, सर्वर लिया है बेसिकली, जो कि वेस्टर्न रीजन का है। अब दुआ करें ये चलता रहे, सिंगापुर का तो नहीं है, सिंगापुर ईस्टर्न साइड पे आ जाता है, लेकिन वेस्टर्न साइड में कुछ किया हुआ है, कुछ जुगाड़ लगाया है, बस दुआ करें कि चलता रहे ये सीन।
राबी साहब कह रहे हैं आई जस्ट इंजॉय योर प्रोग्राम, थैंक्स टू ऑल फ्रेंड्स। भाई आप लोगों का शुक्रिया यार, आप लोगों के, हम तो वैसे ही इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा बहुत आते हैं, जो भी हमारा दिल की बात होती है वो हम करते हैं, और आप लोग आते हो तो और ज्यादा मजा आता है, मतलब फिर कम्युनिकेशन सी एक बन जाती है ना, दोस्तों यारों वाला सीन हो जाता है। चलो मेहर साहब फाइनली निकल लेते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया। ओके जी, सब ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।